السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج هم اس خوبصورت سورة سورت الزمر کی آیت نمبر 42 سے 60 تک کریں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ. اللہ یتوفا، اللہ تعالی فوت کرتا ہے، الانفس نفسوں کو، نفس کی جمع انفس، حتی موتی ہے، سوری ہینا موتی ہے، ہینا وقت کے لیے، موتی ہے موت کے ان کی، موت کے وقت ان کی، ولتی اور وہ جو، لم تمت نہیں مرتے، فی منامیہ اپنی نیند میں، نوم میں، نوم سے منام، فیمسی کو بس امساک کہتے ہیں روک لینے کو، بس روک لیتا ہے، اللتی اس کو جو، کیونکہ نفس کی بات آئی تو نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے اللتی آیا، اللذی نہیں آیا. قضا فیصلہ کرتا ہے، علیہا اس پر، الموت موت کا، ویرسلو اور بھیجتا ہے، الاخرى دوسریوں کو، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، اِنَّا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات لقومی یتفکرون، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. ام اتخذو، ام یا اتخذو انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شفعاء، شفعاء شفاعت کرنے والے، کچھ سفارشی. قل کہہ دیجئے، اولو کیا بھلا، اگر، کانو ہوں، لا یملکون شیئن نئی ملکیت رکھتے کسی چیز کی، ولا یاقلون اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں. کل کہہ دیجئے، للہ الشفاعت اللہ ہی کے لیے شفاعت، جمیعا ساری کی ساری، لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے ملک، بادشاہت، آسمانوں کی اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وَحْدَهُ اکیلے اسی کا، اشمعزت، اشمعزت تو کیا، شین میم زائے، یعنی اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹنا، تو کیونکہ آگے دل کی بات آ رہی ہے تو دل کے سکڑنے کی بات یا نفرت کی بات، اشمعزت قلوب یعنی نفرت کرتے ہیں یا سکڑ جاتے ہیں دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. وَإِذَا اور جب، ذکر الذین ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا، من دونی ہی جو اس کے علاوہ ہیں، اِذَا تب ہم وہ، یستبشرون وہ خوش ہو جاتے ہیں. قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، فاطر السماوات والارض، فاطر پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، انت تحکم تو فیصلہ کرے گا، بین عبادی کا درمیان اپنے بندوں کے، فی ما اس میں جو، थे वो फी ही इसमें यख्तलिफून, इख्तलाफ करते। वलो, और अगर अन्ना बेशक, लिल्लदीना, लिए उन लोगों के, जलमू, जिन्होंने जुल्म किया, माफिल अर्दी, जो जमीन में है, जमीअन, सारे का सारा, वह मिथला हो और उसकी मानिंद हो, माँ हो उसके साथ, लफ्ता दो भी ही, अलबत्ता वो फिदिये में दे दे भी ही उसको, मिनसू अल आदाब, बुरे आजाब से, यौम अल कियामा, कियामत के दिन, वह बदा, और तुबदून और तो खून तो आप पढ़ चुके हैं ना, तो तुबदून भी बदा इसी से है, जाहिर हो जाएगा, लहुम लिए उनके, मीन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, माँ जो लम नहीं, यकूनू थे वो, यह तसीबून वो हिसाब रखते या अंदाजा रखते, वह बदा लहुम और जाहिर हो जाएंगी उनके लिए, सही आतो बुराई या नतीजा, माँ कसबू जो उन्होंने कमाई की, वह हाका और घेर लेगा, बिहिम उनको, माँ जो कानू थे वो, बिही साथ उसके, इस तहजी उन मजाक करते, फ़ाइदा फिर जब मसल इंसाना, छू जाता इंसान को, दुर उन कोई नुकसान, दाना वो पुकारता है हमको, तुम फिर ईदा जब खवलना अता करते हैं हम हु उसको, नेमतन कोई नेमत, मिन से ना हम, यानी अपनी जनाब से, अपनी तरफ से, अला कहता है इन्नामा बेशक, और इन्नामा मैंने आपको बताया था ना कलमाए हसर है, कलमाए हसर का मतलब यह है कि सिर्फ यही बात है, ऐसा ही है सिर्फ, और कोई नहीं, इन्नामा ऊती तू हो आला इल्मिन, ये उसका डायलॉग है, बेशक ऊती तू, ताके ऊपर एंड में पेश है, तो मैं दिया गया हूँ इसको, अला इल्मिन, इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बिना पे, बल्कि ही वो फितना, तुम फितना है, वला किन्ना, लेकिन अक्सर हम, अक्सर उनमें से, ला यालमून, इल्म नहीं रखते, कद तहकी कौला, कहा था उसको, अल्लदीना उन लोगों ने, मिन कबलिहिम जो उनसे पहले थे, फमा तो नहीं, अगना काम आया, अनहुम उनको, मा कानू यकसिबून जो थे वो कमाई करते, फअसाबहुम तो पहुंची उनको, सय्यातु सजाएं, बुराइयां, मा कसबू जो उन्होंने कमाई की, वल्लदीना तलमू और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, मिन हाउलाई उन लोगों में से, सयुसीबुहुम सय्यात अनकरीब पहुंचेंगी हम उनको, सय्यात बुराइयां, माँ का सबूत जो उन्होंने कमाई की, अब जो कमाई की बुराई है वो सजा होती है, अब सजा भी लिख सकते हैं, वह माँ हूँ और नहीं वो, भी मुआजिज़ीन आजिज करने वाले, अवलम यालमू क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशा कि बेशक अल्लाह ताला कुशादा करता है रिज्क जिसका वो चाहता है, वह यकदिर और तंग कर देता है, इन्न फी ज़ालिका बेशक इसमें, लआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमी युमिनून ये उन लोगों की जो ईमान रखते हैं, कुल कह दीजिए या इबादी ए मेरे बंदो, अल्लदीना वो जो असरफू अला अनफुसिहिम जिन्होंने ज्यादती की अपनी जानों पर, ला तकनातु मिन रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीया बख्श देता है गुनाहों को सारे के सारे, इन्नहू बेशक वो हुवल गफूर रहीम वो गफूर रहीम है, व अनीबू इला रब्बिकुम अनीबू इनाबत से नऊब कहते हैं बार बार पलटने को, तो रुजू करना जिसको हम कहेंगे, इला रब्बिकुम अपने रब की तरफ, व असलीमू और मुती हो जाओ, इस्लाम ले आओ का मतलब क्या कि सरेंडर कर दो ना, इस्लाम का यही मतलब है, लहू लिया उसके, मिन कबल इससे पहले के, अय्यातियकुम के आ जाए तुम्हारे पास, अल अजाब अजाब ला तुम सारून, फिर ना तुम मदद दिए जाओगे, मजहूल है। वत्तबिउ, और पैरवी करो, आसाना आसन की, बेहतरीन की, मा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, मिन कबली, इससे पहले, अय्यातियकुमुल अज़ाब, कि आ जाए तुम्हारे पास अज़ाब, बगतन अचानक, व अंतुम ला तशऊरून, और ना तुम शऊर रखते हो, अंतकूला, ये कहे नफ्सुन, कोई नफ्स, या हसरत, हाय हसरत, अला मा फरतु, इस पर जो मैंने, फरतु इफरातु तफरीत आप उर्दू में पढ़ते हैं ना, जो मैंने कमी की, फी जम्बिल्ला, अल्लाह के हक में, वह इन कुंतु, और इन का माना यहाँ पे बेशक करेंगे, इसलिए कि आगे ला आ रहा है, ला मिन साखिरीन जो आ रहा है ना, तो ला जो है इसकी वजह से उसका माना यकीनन का होता है, तो उसकी वजह से इनका तर्जुमा इन्ना हो जाएगा, वह इन, और बेशक, कुंतु मैं था, ला मिन साखिरीन, साखिर कौन, जिसको कहेंगे कि आप हंसी मजाक करना, तमस्खर उड़ाना हम उर्दू में बोलते हैं, वो भी इसी से है, तमस्खर से आप याद रखें, तो अलबत्ता मजाक उड़ाने वालों में से, औ तकूला, या कहे लव, काश, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, हदानी, हिदायत देता मुझको, लकुंतु, अलबत्ता मैं होता, मिनल मुत्तकीन, तकवा वालों में से, औ तकूला, या वो कहे, हीना तरल आदाब, जब वो, जिस वक्त वो देखे आजाब को, लव काश, लव कलमा जो है ना, ये तमन्ना कभी होता है, काश, अन्ना बेशक, ली लिए मेरे, कर्रतन, एक बार पलटना हो, फकूना, तो मैं हो जाता, मिनल मोहसिनीन, मोहसिनीन की आपने पिछली दफा पढ़ी थी ना डिटेल, एक मोहसिन कौन होता है, तो नेकोकारों में से, भला क्यों नहीं, कद, तहकीक, जाअत, आई, क्योंकि आगे आयात की बात है ना, इसलिए आई, का तेरे पास, आयाती, मेरी आयतें, कद्दबता, तो तूने झुटला दिया भी हा उनको, वस्तकबरता, और तकबर किया तूने, वकुंता, और तू था, मिनल काफिरीन, काफिरों में से, व यौम अल कियामा, और कयामत के दिन, तरा अल्लदीना कज़बू अला अल्लाह, तरा तुम देखोगे, अल्लदीना उन लोगों को, कज़बू जिन्होंने झूठ बोला, कज़बू नहीं है, कज़बू है, ठीक है, एक होता है झुटलाना, रिजेक्ट करना, एक होता है झूठ बोलना, तो जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पर, वुजूहुहुम, उनके चेहरे, मुसवद्दा, स्याह होंगे, अलैसा, क्या नहीं है, फी जहन्नम, जहन्नम में, मसवन लिल मुतकब्बिरीन, ठिकाना तकबुर करने वालों के लिए, बिल्कुल सेम है जो हमने इस पारे के शुरू में पढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ तक हमारा आज का रेसन है, ये सूरा जो है बहुत रिच है, यानी इसमें इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, इसका अहाता करना, इसकी आयात का, इसे तो सारे कुरान में ही ऐसा ही है, मगर खास तौर पे इसमें इतनी डिटेल है कि इन आयात का पूरा हक तो अदा नहीं हो सकता बिल्कुल, मतलब सरफेस से हम इनको समझ सकते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप क्लास के बाद ज़रूर तदब्बुर किया कीजिए, इन आयात को दोबारा पढ़ा करें, क्योंकि जब आपका सबक होता है ना जो, तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, और मैंने नोटिस ये किया है कि जब आप लोग बाद में जो बात करते हैं वो आपके जहन में वो वाली बात होती है जो बिल्कुल एंड पे आई होती है, शुरू की सारी बातें आप ज़्यादातर भूल जाते हैं, इंसान का जहन ऐसे ना, वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, तो ज़रूरी है कि आप बाद में इसको पढ़ा करें, ताकि वो जो पीछे आयतें गुजर गई उनके ऊपर भी तो आप गौर करें ना, ये तो नहीं कि सबक के एंड वाली सिर्फ आयात हैं जो ज़रूरी हैं और शुरू की नहीं, ठीक है, तो उनको भी देखा करें, वो टॉपिक्स भी तवज्जो के काबिल होते हैं कि आप उनके ऊपर गौर व फिक्र करें, तो आज देखते हैं सूरत अज़ुमर आयत नंबर 42 से 60 तक, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस, अल्लाह ताला फौत करता है नफ्सों को हीन मौतिया, उनकी मौत के वक्त। ये तो आपको पता है कि मौत के वक्त तो रूह कब्ज होती है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और वो जो नहीं मरते अपनी नींद में, इसका मतलब नींद में भी एक तरह की मौत होती है। इसी वजह से मुहावरा भी है ना कि नींद जो है वो मौत की बहन है। वो इसी वजह से कि हम एक छोटी मौत के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं जब हम सोते हैं। फयुम्सिकुल्लती कदा अलैहा, बस रोक लेता है उसको जो फैसला करता है उस पर मौत का। जब मौत देनी होती है तो फिर उस रूह को वो रोक लेता है। वयुर्सिलुल उखरा, और भेजता है दूसरी को, दूसरियों को, इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक। अब ये क्या बताया जा रहा है हमें कि क्या चीज भेजी जा रही है, क्या चीज रोकी जा रही है, और नींद में हम एवरी नाइट क्या एक्सपीरियंस करते हैं। और ये बात हमें कुरानी बताता है सुभान अल्लाह, कि नींद के अंदर हम किस चीज से गुजर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जब इंसान के ऊपर नींद आती है तो उसकी एक छोटी मौत हो जाती है। यानी आप ऐसा समझे कि समझ लें कि कब्जे नफ्स या कब्जे रूह जो है उसकी दो सूरतें। एक तो मौत के वक्त आपको पता है कि वो तो रूह कब्ज हो जाती है, वो मौते अकबर है, बड़ी मौत है, उसमें तो सांस भी बंद खत्म। एक इंदल मौत, इंदल नऊ में, यानी नींद के वक्त, ये हम छोटी मौत से, मौते असगर से गुजरते हैं जिसमें सांस बंद नहीं होता, लेकिन एक रूह इंसान के अंदर से निकलती है। अब रूह की, अब ये समझे इस बात को, रूह की समझ लें कि दो किस्में हैं, एक है हैवानी रूह और एक है नफसानी रूह। नफसानी रूह या शऊर भी कह सकते हैं हम। तो जो हैवानी रूह है वो नींद में भी इंसान के जिस्म में रहती है, और ये जो हमारे सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं ना, मेदा काम कर रहा है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, और भी जो भी हमारे फंक्शंस चल रहे हैं, आप इधर से उधर करवट ले रहे हैं, ये सब ये हैवानी रूह के जरिए हो रहा है। एक नफसानी रूह है, ये जिस्म से निकल जाती है, बदन को छोड़ देती है और इधर उधर घूमती फिरती है, इसलिए इंसान ख्वाबों में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो ये रूह घूम रही होती है, और अब जब ये निकलती है तो इसकी वजह से हमारी ये जो सिक्स सेंसेस हैं इनमें बड़ी कमी आ जाती है, हमारी सेंसेस में कमी आ जाती है। हम नहीं, ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, कुछ हमारे करीब कोई बात भी हो रही है हमें नहीं पता। और अगर ज्यादा शोर होता है तो इतनी तेजी से, इस रूह की स्पीड बहुत तेज है, इतनी तेजी से ये वापस लौट आती है, क्योंकि इसको अपने जिस्म से बड़ी मोहब्बत है। तो अब अगर ये नफसानी रूह को ये कहीं खुशी मिलती है, कुछ होता है, तो हैवानी रूह पे भी इसका असर होता है। अगर नफसानी रूह कहीं परेशान होती है तो हैवानी रूह के ऊपर भी इसका असर है, इसलिए इंसान बाज दफा चीखना शुरू हो जाता है अपनी नींद में, बाज दफा आप उठते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो अगर अल्लाह ताला फैसला कर ले कि उसने इंसान को जिंदगी देनी है तो अल्लाह ताला इस नफसानी रूह को वापस लौटा देता है, और अगर अल्लाह ताला फैसला कर दे कि इसको मौत देनी है तो नफसानी रूह तो पहले ही निकली हुई है, ये जो हैवानी रूह है ये भी निकाल ली जाती है, दोनों रूहें मिल जाती है, ये एक ही चीज है, मतलब समझ ले कि कॉइन के दो दो तरफ, तो ये दोनों एक ही हैं, तो दोनों मिल जाती हैं फिर, और मौत वाकई हो जाती है इंसान की। क्या इसीलिए यहां पे कहा गया कि रोक लेता है उसको जब फैसला करता है मौत का, यानी कौन सी रूह को रोक लेता है, वो जो नफसानी रूह निकली थी ना उसको अल्लाह ताला रोक लेता है जब मौत का फैसला करता है, और भेज देता है दूसरियों को, यानी जो दूसरी जिनका अल्लाह ताला ने मौत का फैसला नहीं किया हुआ उनको वापस भेज देता है कि वापस जिस्म में चले जाएं, लेकिन कब तक, इला अजले मुसम्मा, एक मुकर्रा वक्त तक।
ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए इसी तरह चलता रहेगा, एक मुकर्रर वक्त, एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर रू नहीं लौटेगी, या ये मोहलत दी गई कि एक मुकर्रर वक्त तक इसी तरह लौटती रहेगी हत्ता के मौत आ जाए। तो फिर दिन में भी मौत आ सकती या रात में आ सकती, इसीलिए आप देखते हैं बाज दफा लोगों का कहा जाता है अच्छा भला रात को सोया था, पता नहीं क्या हुआ, फिर उठा ही नहीं। तो वो सोच लें सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला फरमाता है ना इन्ना फी ज़ालिक लआयात लिक़ौमी यतफक्करून, इसमें बेशक निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। आप इसे एक आयत कोई लेके बैठ जाए ना तो आप इस पे गौर व फिक्र करें तो आप हैरान होंगे, अब हमारे पास इतना वक्त तो नहीं होता, लेकिन आप इसके ऊपर सोच सकते हैं नींद क्या चीज है और मौत क्या चीज है। नींद वाकई जब आप मसलन है कि ये ताक रातों में जागते हैं आप रमजान में और नींद का गलबा आने लगता है, इंसान इतनी कोशिश कर रहा होता है लेकिन नींद हावी होने लगती है, तो फिर इंसान को समझ आती है कि मैं कितना बेबस हूँ। बड़े बड़े बादशाह हों या अंबिया हों औलिया हों, कोई भी हो, नेक से नेक इंसान हो या बहुत बड़ा अमीर कबीर हुक्मरान बादशाह कोई भी हो, नींद के सामने वो भी बेबस है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की एक मखलूक है ना नींद, उसके सामने इतने बेबस हो गए कि तुम्हारा जरा भी जोर नहीं चलता। तुम ये सोच लो कि अल्लाह ताला कितनी कुदरतों वाला है, वो क्या रब है जिसने एक छोटी सी अपनी मखलूक से तुम्हें मखलूब कर दी, छोटी सी मखलूक है अल्लाह की। नींद क्या चीज है, नजर भी नहीं आती, लेकिन कैसे वो जब आ जाती है तो इंसान अच्छा भला बड़ा पहलवान भी बेबस हो जाता है। आप देखे ना वो लोगों को जो अस्तगफिरुल्लाह जो टॉर्चर करते हैं, तो मुजरिमों से राज उगलवाने के लिए वो क्या करते हैं कि उनको बहुत दिनों तक सोने नहीं देते, और जब सोने नहीं देते तो वो फिर इतने बेबस हो जाते हैं कि वो सारे राज उगल देते हैं। अब जब नींद के सामने इंसान ऐसा बेबस हो जाए तो सोचें कि अल्लाह ताला के आगे एक एक मखलूक के आगे इतना बेबस है, अल्लाह के आगे क्या इंसान की हैसियत है, अल्लाह ताला के आगे इंसान क्या खड़ा रह सकता है जब वो एक नींद के आगे भी नहीं खड़ा रह सकता, उसके आगे भी बेबस हो जाता है। तो इंसान अपनी हैसियत को पहचाने के इंसान तो क्या चीज है कि तेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं, वैसे इंसान बहुत बड़ी चीज बनता है, बहुत अकड़ता है, लेकिन देखो कि इंसान कितना बेबस हो जाता है, कितना बेबस हो जाता है कि इंसान से अपने आप को संभाला भी नहीं जाता। अब ये देखें कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इस एक्सपीरियंस से रोजाना इंसान को गुजारता है, हर रात इंसान इस एक्सपीरियंस से गुजरता है कि वो नींद में से जाता है और फिर उठता है, नींद से निकलता है और फिर उठता है। अल्लाह ताला याद कराता है कि देखो इसी तरह एक दिन तुम्हें मौत आ जानी है, और मौत से भी तुम उसके बाद दोबारा उठाए जाओगे, मौत से भी तुम्हारी दोबारा इस जो बासबादुल मौत का इनकार करते हैं वो ये देखें कि वो कैसे इनकार करते हैं जबकि वो रोजाना उठते हैं, रोजाना सोते हैं, रोजाना उठते हैं, और फिर उसके बाद फिर इनकार कर देते हैं कि एक दिन वो ऐसे उससे गुजरेंगे कि वो दोबारा वो उठाए नहीं जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए इंसान समझे इस चीज को, और इससे हमारा ईमान पुख्ता हो जाना चाहिए कि हम लोग जो इस चीज का मुशाहिदा करते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि अल्लाह ताला जरूर उठाएगा एक दिन। और इसी पे एक जो दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को सोने की दुआ, वो बहुत ही इतनी खूबसूरत दुआ, और उसी के अंदर भी इसी चीज को बयान किया गया और हमें ये बात समझा दी गई है कि किस तरह इंसान जब सोएगा और फिर वो
अगर अल्लाह ताला उसकी रूह को वापस नहीं भेजता तो उसका उसके साथ अल्लाह ताला क्या मामला करे। सोचें जब हर रात इंसान ये सोच के सोए कि पता नहीं मेरी रूह वापस लौटाई जाती है या नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला अगर मुझे नींद में ही मौत दे देगा तो मेरा फिर क्या होगा। अगर इंसान ये रात को सोच के सोए तो जाहिर है फिर बहुत चीजों पे तौबा इस्तगफार भी कर सकता है, फिर जाहिर है किसी को माफ भी कर सकता है, फिर जाहिर है इंसान बहुत सारे जो ग्रजेस दिल के अंदर है वो भी निकाल सकता है। तो बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो अपने तहबंद के अंदरूनी हिस्से से उसको झाड़ ले, अब ना जाने इस पर क्या कुछ हो। यानी सबसे पहले क्या करें, अब आपके पास मतलब तहबंद तो हमारे पास नहीं है, मतलब हमारा दुपट्टा या हमारी चादर है उससे अगर हम बिस्तर को झाड़ लें, और उसको इसलिए नहीं कि पता नहीं हमारे बिस्तर पे कोई सांप ना हो या कुछ है और हमें तो नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसको सोचे कि इससे झाड़ ले ताकि पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी कोई मखलूक हो क्या हो बिस्तर के ऊपर, हम नहीं जानते। फिर ये दुआ पढ़े, बिस्मिका रब्बी वदातु जंबी, ए मेरे रब मेरे पालने वाले, मैं तेरे नाम से अपना पहलू अपने बिस्तर पे रखता हूँ, वह भी का अरफा हूँ, और मैं तेरे नाम से ही उसको उठाता हूँ यानी अपने आप को। इन अमसकता नफसी, अगर तू मेरी जान को कब्ज कर ले, फरहमहा, तो तू इसके ऊपर रहम फरमाना, वह इन अरसलता, और अगर तू भेज दे इसको यानी वापस मेरी रूह लौटा दे, फहफजहा, तो इसकी हिफाजत करना, बीमा तहफज बिही इबादक सालेहीन, जैसे कि तू नेक बंदों की हिफाजत करता है ऐसे मेरी इस रूह की हिफाजत करना। यानी अल्लाह यानी दिन जब चढ़ता है तो जैसे नेक बंदे होते हैं तेरे, तू उनकी हिफाजत करता है, अल्लाह इसी तरह मेरी हिफाजत करना, अगर तू मेरी रूह को रोक ले फिर इसके ऊपर रहम फरमाना, यानी अगर मैं मर जाऊं नींद के अंदर ही तो अल्लाह तू रहम करना, और अगर मैं जाग जाऊं मैं वापस आ जाऊं तो अल्लाह मेरी रूह की हिफाजत करना। कितनी प्यारी दुआ है ना, यानी दिन अगर मेरा शुरू होता है, आप देखें दिन के अंदर कितनी चीजें हैं जो शर पहुंचाने वाली हैं, कितने फितने हमारे इर्द गिर्द होते हैं, कितना कुछ होता है, तो अल्लाह ताला तू इसमें हमारी हिफाजत करना। तो ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि हम सबको ये याद कर लेनी चाहिए, और जब तक नहीं याद होती तो इसको अपने पास रखें और हम इसको मांग के सोया करें, इस दुआ को, इसके बगैर ना हम रात को सोएं, क्योंकि हमने अपने रात अपनी नींद से पहले भी ये दुआ कर ली, तो ये दुआ कबूल हो जाए तो सोच लें कि फिर अल्लाह ताला की का रहम होगा, अगर अगर अल्लाह ताला ने हमें मौत दे दी और अगर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी तो फिर भी अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। तो इसलिए ये सुभान अल्लाह इतनी खूबसूरत दुआ भी है, और ये आयत हमें बताती है कि हम मौत के एक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, फिर कितना इस चीज के ऊपर भी इंसान को रात को सोचना चाहिए कि मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ, मेरे अल्लाह की कुदरत है, अगर वो मेरी जिंदगी लौटा दे तो ये उसकी मेहरबानी। यानी आप ये सोच लेना कि इसके बाद आप अल्लाह ताला के आगे और ज्यादा झुक जाते हैं, और ज्यादा अल्लाह ताला की उसकी कुदरत का एहसास करते हैं, और अपनी बेबसी का भी, कि अल्लाह मैं अब कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने सोना ही नहीं है, मैंने सोना नहीं है, मैंने बस जागे ही रहना है और मैं तो इससे गुजरना ही नहीं चाहता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो भी इंसान इससे गुजरता है, हर इंसान गुजरता है, और हर मखलूक सरती, आप देखिए जानवर भी सोते हैं, इंसान भी सोते हैं, तो आप तो सारे जो जितने भी चरिंद परिंद सबको नींद का गलबा आता है, कैसी अल्लाह ताला ने ये एक मखलूक बनाई है ना, इस पे कभी भी नहीं गौर करते हम कि ये क्या चीज है, हमें पता भी नहीं चलता, हम नींद की आगोश में चले जाते, उसके बाद हम उठते हैं, और कितनी दफा ये पता नहीं हमारी रूह आती और जाती है, कितनी दफा ऐसा होता है हम रात को आंख खुलती है फिर उसके बाद हम फिर चले जाते हैं नींद में, फिर हमारी आंख खुलती फिर नींद में चले जाते, तो
तो अल्लाह ताला की ये निशानी है, इसका मतलब नींद भी अल्लाह की निशानी है, मौत भी अल्लाह की निशानी है, और ये रूह का निकलना और वापस आना ये भी अल्लाह की निशानी है, ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं। इनके ऊपर इंसान गौर व फिक्र करे तो अल्लाह ताला को पहचान ले। जो इंसान अपने आप को समझते हैं कि हम खुदा हैं, या जो समझते हैं कि हम बहुत कुव्वत और ताकत वाले हैं, या जिनको किसी ने खुदा बनाया हुआ है, वो देख लो वो तो कितने बेबस हैं कि वो भी नींद से आजाद नहीं, पाक नहीं। जिनको भी लोग पूछते हैं, चाहे वो कितने ही बुजुर्ग हो, कितने ही बड़े औलिया अल्लाह हो, खुद सोचे अगर वो दुनिया से चले भी गए, या जो दुनिया में हैं उनके ऊपर बहुत भरोसा करते हो कि ये हमारे काम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ये हमें कुछ दे सकते हैं, वो तो इतनी भी कुदरत नहीं रखते कि वो अपनी नींद पे काबू पा सके और इसको अपने से हटा सके। वो भी सो जाते हैं और आधी मौत का एक्सपीरियंस कर लेते, और एक जात सिर्फ है जो ला तखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको ना ऊंग है और ना मौत है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो सिर्फ अल्लाह की जात है कि उसको ऊंग तक नहीं है, ऊंग तक नहीं है, ना नींद है ना मौत है। अल्लाह हू अकबर। तो ना अच्छा, जो नींद है वो तो ज्यादा गहरी चीज है, ऊंग तो उससे बहुत हल्की चीज है, ऊंग तक नहीं अल्लाह ताला को आती, कि वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, और बगैर किसी गफलत के, बगैर किसी आराम के, इन सब चीजों से वो पाक है। और ये इंसानी कमजोरी है कि वो नींद से पाक नहीं है, इंसान की कमजोरी है कि वो नींद उसकी जरूरत है, वो उसको सोना ही सोना है, वरना वो जिंदा रह ही नहीं सकता, वो खत्म हो जाएगा अगर वो सोए ना। तो सुभान अल्लाह, ये इस निशानी पे भी आप गौर करिएगा और इससे अपने रब को पहचानिएगा। अम इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा, क्या वो बनाते हैं या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवा सिफारशी? कुल कह दीजिए, अवलौ कानू, क्या भला अगर वो हों, ला यमलिकून शैअन, नहीं मिल्कियत रखते किसी चीज की, वला याकिलून, और ना वो अकल रखते हैं। क्या इन्होंने अल्लाह की सिफारशी बना लिए हैं जबकि वो कोई चीज की भी मिल्कियत नहीं रखते? उनको कैसे तुमने, यानी किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया? किस इख्तियार के तहत तुम ये सोचते हो कि हमारे सिफारशी हैं और वो हमें बचा लेंगे? दो तरह की सिफारिश के बारे में बातें मुशरिकी ने मक्का करते थे। एक तो ये कि हम इनको इसलिए पुकारते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ ये हमारी सिफारिश कराएं और हमें रिस्क मिले, हमें हमारे हमारे रोजी में ज्यादा ज्यादती हो, हमें नेमते मिले। और दूसरा वो ये कहते थे कि हम इसलिए इनको पुकारते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला से करीब कर देंगे और हमारी शिफाअत करेंगे कयामत के दिन, और हमें इनकी शिफाअत की वजह से कयामत के दिन निजात मिल जाएगी, हमारी बख्शिश हो जाएगी। आज भी बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है कि फलां फलां हमारे सिफारशी होंगे और उनको हम थाम लेंगे तो वो हमें पार करा देंगे। अब ये सोचना चाहिए कि क्या उनके पास कोई किसी चीज की मिल्कियत है? क्या वो कोई अकल रखते हैं? अकल इसलिए यहाँ पे कहा गया क्योंकि मुशरिकी ने मक्का तो लकड़ी के बुतों को पूजते थे, पत्थर के बुतों को पूजते थे, उनमें क्या अकल है? और मालिक तो किसी चीज के भी नहीं, कितमीर तक के मालिक नहीं, एक खजूर की गुठली के ऊपर जो इतना सा धागा होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया इस चीज तक के मालिक नहीं, सिफारशी कहाँ से बनेंगे? अभी हमने बात की कि नींद तक के ऊपर भी किसी का कंट्रोल नहीं, अगर वो जिंदा है तो, और अगर वो जिंदा ही नहीं है, कोई पत्थर की चीज है, तो वो क्या चीज है? वो उसके अंदर तो वैसे ही कोई अकल ही शहूर ही नहीं है, ना वो किसी से की मिल्कियत रखते हैं। तो किसी को ना इख्तियार है कि वो खुद सिफारशी बन जाए कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, और ना ही किसी को ये इख्तियार है कि वो किसी और को सिफारशी बना ले, ये भी नहीं इख्तियार। यानी हम में से कोई उठ के ये नहीं कह सकता मैं जी फलां को अपना शिफात करने वाला बना लूंगा, पर
फला मेरा सिफारशी बन जाएगा, ये नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी किसी चीज की मिल्कियत नहीं रखता। मिल्कियत फिर किसकी है? कुल लिल्लाहि शफातु जमिया, कह दीजिए अल्लाह ही के लिए शिफात है सारी की सारी, यानी शिफात का मालिक अल्लाह है, ये इख्तियार अल्लाह का है, मेरा आपका किसी और का भी ये इख्तियार नहीं है। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा नहीं होगा कि आप समझते हैं कि राइट अवे जाके सिफारिश शुरू कर देंगे, किसी की भी शिफात करने लगेंगे, अल्लाह इसको बख्श दे, ऐसा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अरसा अल्लाह ताला के आगे झुके रहेंगे, उसकी हम तस्बीह बयान करेंगे, वो भी फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त ही मुझे सिखाएगा, पता नहीं कितना अरसा इसमें गुजर जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ताला मुझे फरमाएगा कि अपना सर उठाओ और मांगो और सिफारिश करो, तुम्हारी शिफात कबूल की जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इख्तियार से जाते ही करने शुरू जाएं, या अल्लाह इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे, और इसको मैंने बचा लिया, और मैंने इसको, और ये इसको तो तुझे माफ करना ही पड़ेगा, नाउज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये कैसी बात हम सोचते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये हाल है, कोई और कैसे उठ के एकदम अपने से कह सकता है कि मैं फलां की शिफात करने के लिए खड़ा हो गया। तो यानी शिफात सारी की सारी अल्लाह के हाथ, जिसको चाहे ये इख्तियार दे कि वो शिफात करे, और जिसके लिए चाहे वो इख्तियार दे कि वो उसकी सिफारिश की जाए, उसके लिए सिफारिश की जाए। समझ आई? दोनों बातें समझ लें, यानी शिफात के मामले में ये बात समझनी चाहिए कि कौन शिफात करेगा, ये भी अल्लाह ने फैसला करना, किसके लिए शिफात करेगा, ये भी अल्लाह ने फैसला करना। इसीलिए तो कुल लिल्लाह शफा तो जमीआ, सारी की सारी शिफात उसके हाथ में, बंदे के हाथ में फिर क्या है? क्या आप सोचते हैं अपनी मर्जियों से लोगों से शिफाते करते रहेंगे? नहीं, उनका क्या इख्तियार है, और या उनके पास क्या मिल्कियत है किसी चीज की कि वो शिफात करने के लिए खड़े हो जाए और कहें कि हमारा हक है शिफात करने का। वहां पे सब बेबस होंगे, नफसी नफसी की पुकार होगी, वहां पे तो इंसान अपनी जान के लिए पहले फिक्र कर रहा होगा, किसी और की क्या फिक्र करेगा। और उसके बाद हाँ, अल्लाह ताला इजाजत देगा, लेकिन वो किस लिए, किस लिए देगा इजाजत? इसलिए ताकि उन लोगों को ऑनर दिया जाए जिन लोगों को अल्लाह ताला शिफात का इख्तियार देता है, उनको इज्जत देने के लिए। जैसे हम मिसाल के तौर पे आप देखते हैं ये तकरीबात के अंदर जब इनामात दिए जाते हैं, या कोई 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 और ऐसी चीज, सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाती है, तो फिर कुछ गेस्ट होते हैं, उनको बुलाया जाता है, जी आप आए और आप स्टूडेंट्स के अंदर ये तकसीम करें। अब वो उसने तो नहीं फैसला किया ना, वो तो आके आप उसको एक इज्जत दे रहे हैं, आप उसको स्टेज पे बुलाते हैं, फिर वो देता है, तो अब वो तो ना चूज कर रहा है ना उसको कोई पता है, वो तो बस देने वाला है, तो आपने असल में उसको इज्जत दी है। तो अल्लाह ताला कुछ लोगों को खड़ा करेगा, आप शिफात करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बख्शना होगा, इसलिए अल्लाह ताला उनको खड़ा करके उनसे फरमाएगा आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश के ऊपर इनको मैं बख्शूंगा। तो असल में शिफात फिर किसके हाथ में हुई? अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह को राजी करने की जरूरत है, ना कि दरगाहों पे जाके चादरें चढ़ाने की, कि ये हमारी सिफारिश करेंगे इसलिए हम यहाँ पे चादरें चढ़ा रहे हैं। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उसी के लिए बादशाहत आसमानों की और जमीन की, सुम्मा इलैहि तुरजाउन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। बाद आसमानों की बादशाहत उसके पास, जमीन की बादशाहत उसके पास, तो उसी का हक है ना कि वो ही शिफात का हक जिसको भी दे, वो जिसको चाहे बख्शे, तुम्हें उसकी तरफ लौट जाना। फिर सब जब चीजें उसी के हाथ में है, तो शिफात भी तो उसके हाथ में है। वइदा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु, और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वहदहु अकेले उसी का, ये अब मुशरिकीन का हाल बयान किया जा रहा है यहाँ पे, कि जब अकेले अल्लाह की बात होती है, हालांकि किसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के ऊपर तो बिलीव करते थे, जी हाँ वो ये कहते थे कि एक अल्लाह है जो कि सबसे ऊपर है, मगर ये उसके शरीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि वो इनकार करते थे। इसीलिए आज उलमा कहते हैं ना कि वो उन लोगों का शिर्क
या कुफर में तो सारे ही हैं जो आज भी हैं, लेकिन उनका कुफर कम अज कम इनके कुफर से तो बेहतर था, क्योंकि वो एक अल्लाह को तो मानते थे ना, इन्होंने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया, खुदा है ही नहीं कोई। वाहिदा ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة, जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अकेले अल्लाह का, तो दिल तंग होते हैं। किन के? उन लोगों के जो ईमान नहीं रखते आखरत पर। यानी ये नहीं कहा गया जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, आखरत पर ईमान नहीं रखते। जब आखरत का ईमान नहीं होता ना, तो अल्लाह पर ईमान है भी अगर, तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए कि जिसने आखरत, किसने कहा है हमें आखरत के बारे में, किसने बताया? अल्लाह ताला ने बताया ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि उसके ऊपर ईमान रखो। ईमानियात में से एक ईमान आखरत पर ईमान भी है। अब आखरत का ईमान अगर किसी में नहीं है, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, 6 हैं अरकान ईमान के, पता है ना आपको। उन सब के ऊपर ईमान रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अगर इनमें आखरत पर ईमान मिसिंग है, या अच्छा ये भी अब एक बात और समझ लें, ईमान का मतलब ये नहीं कि मैं अपने जहन के अंदर एक आखरत के बारे में खाका रख के और उसके बारे में खुद ही कुछ सोचा हुआ है कि क्यामत के दिन का मतलब ये है कि सारों की बख्शिश हो जानी, सब ने जन्नत में चले जाना है, सब ऐसे हो जाएगा। और अच्छा वो मेरी अपनी बातें हैं, अपने दिमाग की। अब हाँ जी, मैं तो कयामत पे ईमान रखती हूँ, और क्या ईमान है वो जो मेरे जहन के अंदर, ये ईमान नहीं चाहिए। ईमान वो जैसे कि अल्लाह ताला ने बताया, उस मुताबिक ईमान रखना जरूरी है, उस मुताबिक ईमान होना चाहिए जो जो बात अल्लाह ताला ने बताई कि इस तरह होगा, ऐसे होगा। ये चीज जैसे अब शिफात की बात आई, अब शिफात का अकीदा मैंने अपना नहीं कुछ बनाना कि मेरे अपने दिमाग में ये आता है, मैं समझती हूँ जी कि फलां हाफिज़े कुरान भी शिफात करेगा तो फलां मेरी शिफात कर देगा, और ये तो जरूर शिफारसी होगा और ये भी हो, ऐसे नहीं। बल्कि जैसे अल्लाह ताला ने बताया, जैसे अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया, उस तरह से यहां पर बताया गया, जो ईमान नहीं रखते अल्लाह की मुलाकात का, अल्लाह ताला से मिलने का, क्योंकि इस अकीदे का बहुत असर होता है इंसान की जिंदगी पे। जितना ये अकीदा स्ट्रोंग होगा ना, उतना ही इंसान की ये बोलती बंद हो जाएगी, अमल पे ज्यादा तवज्जो होगी, बातों पे कम। जितना ये अकीदा कमजोर होगा, बातें बहुत हैं, बहाने बहुत हैं, दलीलें बहुत हैं, इधर उधर की बातें बहुत हैं। आखरत के ऊपर, अपनी फलाह के ऊपर, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। क्योंकि जब आखरत का अकीदा स्ट्रोंग होता है ना, इंसान की परेशानी ही और हो जाती है, इंसान की फिक्रें ही और हो जाती हैं। तो ये लोग जो, जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो इनके दिल जो हैं घुटने लगते हैं। इश्मा अज़्ज़त का मैंने आपको क्या बात बताई कि इनके सीने घुटते हैं, यानी अब इनको इनके सीने भींचने लगते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। किन बातों में इंसान का दिल लगता है? वो बातें जो उसकी उसके मुताबिक होती हैं, जो जो उसकी पसंद की होती हैं, जिन चीजों से वो मोहब्बत करता है, उनमें इंसान का दिल कितना खिल उठता है ना। और जिन बातों में उसकी दिलचस्पी ना हो, जिन चीजों को वो पसंद ना करता हो, उनसे दिल घुटता है, ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ताला ने काफरों के बारे में ये बताया कि उनका दिल घुटता है एक अल्लाह के जिक्र से, वह ईजा, और ज और उलट है फिर उसके बाद, और किसके जिक्र से उनका दिल बड़ा खुश होता है, वह ईजा जुकिर अल्लदीना मिन दूनी ही ईजा हुम यस्तबशिरून, जब उनके अलावा के बारे में बात की जाती है तो उनके दिल खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं। अब अलावा के बारे में किसकी, यानी जब बुतों की बात की जाए या इधर उधर की बातें की जाए, तो बड़े दिल उनके खुश होते हैं। आज भी आप देखिए, ये तो काफरों की बात हो रही है ना, मुशरिकीन का हाल है, लेकिन आप ये देख लें कि जिन लोगों का अकीदा आखरत स्ट्रोंग नहीं है या सिर्फ बातों में है, उसके बाद वो क्या कहते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो उस वक्त उनके सीने घुटने लगते हैं, तंग होने लगते हैं। और दूसरों की बातें की जाती हैं, किसी मसलन सात बीबियों की कहानी की बात आ गई, पीरों फकीरों की बातें आ गई, इसी तरह फलां किस्सा उसके किस्से, अपने मन घड़त किस्से, जी ऐसा हो गया, उसने ये किया तो ये हो गया, पता नहीं क्या कोई ऐसा ही चमत्कार हो गया। उन बातों के अंदर बहुत दिलचस्पी है, लेकिन कहीं कुरान की आयत आ जाए, उनके सामने पढ़ी जाए, उसका तर्जमा बयान किया जाए, हदीस बयान की जाए, उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं। ये किससे कहानियां सुनाते जाओ हमें, इनके उनके उनके, भाई औलिया अल्लाह के किस्सों को हम बड़ा इंजॉय करते हैं, ये ठीक है औलिया अल्लाह हैं उनके किस्से हैं, लेकिन जब एक अल्लाह की बात आती है, कुरान की बात है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसमें क्यों दिल घुटता है? इससे भी आगे चले जाएं, जिनका बिल्कुल ही ईमान कमजोर है आखरत के ऊपर, फिर उसके बाद उनका हाल क्या होता है? उनका हाल तो ये होता है कि अल्लाह की बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, बिल्कुल पसंद नहीं आती, बल्कि चैनल चेंज कर देते हैं, जहां पे कोई दर्स हो रहा है वो नहीं अच्छा लगता, वो दूसरी दूसरा चैनल अच्छा लगता है, जहां पे गाने चल रहे हैं, जहां पे और चीजें हो रही हैं। इसी तरह मजलिसों में देख लें, बास लोगों को इतनी दिल की तंगी होती है अल्लाह के जिक्र से कि वो बस कहते क्या, फिर वो ही बोर टॉपिक शुरू कर दिया, नहीं उनका दिल घुटता है, उनसे सुना भी नहीं जाता, और अगर कहीं कोई बुला ही ले दर्स के ऊपर तो इतनी देर में जाना कि खत्म ही हो चुका हो, क्योंकि हम जाके अपनी बातें करें, जरा मजा करें, कुछ इंजॉयमेंट होनी चाहिए, ये क्या बोर बातें लेके बैठ जाते हैं। वो जाते उस वक्त है ताकि सब खत्म हो जाए और हल्ला गुल्ला शुरू हो जाए, उसमें मजा आता है। इसी तरह अगर कोई टॉपिक आ जाए ऐसा बातों बातों में, तो फौरन टॉपिक चेंज कर देते हैं। अच्छा, उनको उनके सामने कोई अल्लाह की बात की जाए ना, तो उनको याद आ जाता है कि अभी हमने कोई फोन पे चेक करना है, कुछ फोन पे टेक्स्ट चेक करना शुरू हो जाएंगे, मजलिस में बैठे में अल्लाह का जिक्र हो रहा है और फोन चेक कर रहे हैं, क्योंकि दिल नहीं लग रहा ना, ये अलामत इस चीज के, दिल नहीं लग। देखिए जहां पे आपका दिल लगता है, कोई मूवी चल रही हो, कोई ड्रामा चल रहा हो, उसका कहते एक सीन भी ना इधर से उधर हो, अगर किसी ने उठा दिया कुछ कहना पड़ गया किसी को कि ये चीज ला दो, तो उतनी देर भी लाने लाने में भी गर्दन मुड़ी होती स्क्रीन की तरह कि एक सीन भी ना चला जाए, पॉज करके जाते हैं कि एक एक डायलॉग भी मिस ना हो जाए। नहीं, लेकिन जब अल्लाह की बातें आती हैं तो इतने रिलैक्स्ड हैं हम, क्या हमें मजा ही ना आए? ये तो हमारी रूह की गिज़ा होनी चाहिए। और वाकई जिनके लिए होती है, यकीन करें मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, अगर एक जगह दर्स हो रहा होता है ना, वो गुजर रहे हैं पास से, वो जानते नहीं है। एक हम रेस्टोरेंट में थे, वहां पे दर्स चल रहा था, तो कोई लोग आए, वो उनकी भी कुछ कुछ वो वहां पे भी खाना खाने आए थे, वो खातून वहां से उठ के हमारे पास आ गई, कह रही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये देख के किस तरह अल्लाह का जिक्र करें, जिनके अंदर मोहब्बत हो। देखे इसी तरह हम हरम में कई दफा ऐसा होता है कि बात की जा रही हो, कोई अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, कोई छोटा सा दर्स हो रहा है, तो कोई लोग जो रैंडमली इधर उधर बैठे हुए हैं वो भी उठ के आ जाते, जिसका दिल हो, जिसका शौक हो, वो तो ढूंढता है ऐसी मजलिसें, वो तो तलाश करता है ऐसी बातों को, उसका दिल करता है कि कोई ऐसी बात करे। और जिनके दिल दूसरी चीजों में लगे होते हैं, उनका हाल ये होता है कि उनके दिल को ऐसे बेचैनी लग जाती है, जमाइयां आने लगती हैं, इसीलिए तो कभी फोन चेक करेंगे, कभी इधर उधर देखेंगे, कभी बच्चे से खेलना शुरू कर देंगे कि बस खत्म हो। हमें देखना चाहिए, हम सबको अपने दिल का जायजा लेना चाहिए कि इन टॉपिक्स को हम एंजॉय करते हैं और किन बातों पे हम कहते हैं लो अब फिर शुरू हो गए। अच्छा, मुंह से चाहे नहीं बोल रहे, दिल में कह रहे हैं कि क्या फिर यही वाली बातें, फिर ये टॉपिक लेके बैठ गए।
या कौन सी मजलिसें हैं जिनके अंदर हमें मजा आता है? कौन सी मजलिसें हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं? कोई ढोलकी पे बुला ले, कोई मेहंदियों पे बुला ले, शादियों पे बुला ले, तो हम कितने खुश होके जाते हैं। और कोई अगर कोई दीन की मजलिस पे बुला ले तो फिर हमारा हाल क्या होता है? नहीं, मौसम ठीक नहीं है, नहीं आज सर में दर्द हो गई, नहीं बच्चे को स्कूल से लाना, नहीं फलां चीज हो गई। लेकिन ऐसी जो दूसरी मजलिस है वो हमारे पास कोई वो नहीं होता, बल्कि उसमें शौक से जाते हैं। सर में दर्द भी है तो गोली खा के चले जाएंगे। तो हमारे शौक क्या है? यहाँ पे तो मुशरिकीन की बात की गई कि उनके सीने घुटते हैं। हम तो मोमिन मुसलमान अपने आप को कहते हैं। हमारे भी अगर अल्लाह के जिक्र में दिल ना लगे, उन मजलिसों में दिल ना लगे, हम इनको कभी हमें मजा ही ना आए, हमारे मजे ही कुछ और हैं। मर्दों के लिए देख लें तो अगर उनको पूरी रात स्पोर्ट्स की कोई मैच, कोई क्रिकेट मैच के लिए सारी रात भी जागना पड़े तो कोई मसला नहीं, पूरी रात गुजर जाती थकते नहीं। लेकिन वही अगर कोई एक आध घंटे का लेक्चर हो, या इमाम साहब अगर नमाज ही लंबी कर दें तो कहते लो देखो कितनी लंबी नमाज पढ़ा दी। तो देखिए हमारी शौक क्या है, हमारे दिल किधर लगे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को तो बहुत बड़ी चीज समझते हैं, लेकिन हमारे दिलों पे गफलतों के पर्दे पड़े हैं। हमारा ईमान आखरत पे कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया जिनका ईमान आखरत पे नहीं है उनका ये हाल होता है। हम तो कहते हैं हमारा ईमान है, लेकिन मे भी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए कभी कभी सुनना तो ठीक लगता है, लेकिन ज्यादा भी ना करो, हमारा मजा खराब हो जाता है। थोड़ी देर की बात कर ली बस ठीक है, इतना ही काफी है, इसे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो अपने दिलों का हम जायजा लें, हमें खुद अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए, किसी के लिए नहीं अपने लिए। हम खुद जाने हम किधर खड़े हैं, तो नोट किया करें अपने हालात को। देखिए दूसरों का जिक्र होता है खिल उठते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात हो, फिल्मों ड्रामों की बात हो, आज के कपड़े क्या चल रहे हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, खिल जाते हैं चेहरे, चेहरों से पता चल जाता है कि कितनी खुशी है, बढ़ बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। अल्लाह हू अकबर, कहीं कुरान हमारे ही तो नहीं पोल खोल रहा। कुल कह दीजिए, कुल क्यों कहा जाता है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिम्मेदारी है सारा कुरानी लोगों को समझा देना, बता देना, पहुंचा देना, फिर ये क्यों कहा जाता है कुल कुल हु अल्लाहु अहद, कुल या और जगहों पे आता है। इसलिए कि जब कुल आए ना तो समझ जाया करें कि ताकीद के लिए, यानी ये बात इंपॉर्टेंट है, आप कह के बता दें इनको। वैसे तो सारा कुरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ये कुल के साथ कही गई। अल्लाहुम्मा फातिर अस्समावात, अब ये जो आयत है ना इसके बारे में मारफुल कुरान में है कि सईद बिन जुबैर फरमाते हैं मुझे कुरान की ऐसी आयत मालूम है कि उसको पढ़ के जो दुआ भी की जाती है वो कबूल होती है। तो आप ज्यादा तवज्जो से सुने, अल्लाहुम्मा 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 क्यों आता है? अल्लाहुम्मा का तर्जुमा आपने क्या लिखा, या अल्लाह, ए अल्लाह, राइट? तो ये तो या अल्लाह नहीं है, ये तो अल्लाहुम्मा है। कभी और आपने इस पे किया? असल में जो इसका मतलब है ना, या ये एक्चुअली या अल्लाह ही है, अल्लाहुम्मा जो है आखिर में जो इसके मीम है वो या की बदल में आई है, या की जगह आई है जो आखिर की मीम है, वरना क्या होता या अल्लाह, ठीक है? तो या अल्लाह जब कहा जाता तो फिर शुरू में क्या होता, या होता, अल्लाह का नाम ना होता। तो इसलिए ताकि शुरू में अल्लाह का नाम आए, इस वजह से या की जगह पे मीम एंड में लाई गई, ठीक है? अब आप जब भी अल्लाहुम्मा वाली दुआएं पढ़ें तो समझ लें कि अल्लाहुम्मा मीन्स या अल्लाह, लेकिन हम या को एंड में लेकर आए हैं और अल्लाह का नाम पहले लाए हैं, ठीक ठीक है, ताकि शुरुआत अल्लाह के नाम से, या से ना हो, सही। फातिर समावाती वल अर्द, फातिर, फातिर मतलब ऐसा पैदा करने वाला जो ऐसे पैदा करे कि जिससे इससे पहले कोई चीज नमूने के तौर पे नहीं थी, इससे पहले कोई चीज इसकी मिसाल नहीं थी। अल्लाह ताला इसका मतलब ओरिजिनेटर है, यानी शुरू ऐसा नहीं था कि आसमानों जैसी कोई चीज पहले भी थी, जमीन जैसी कोई चीज पहले, वो फर्स्ट टाइम पैदा करने वाला, आसमानों का और जमीन का, आलिम अल गैब व शहादा, आलिम जानने वाला गैब का और हाजिर का। गैब हमारे लिए गैब है, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज भी गैब नहीं है, उसके लिए हर चीज ही जाहिर है। लेकिन जो चीजें हमारे लिए गैब है वो बताई गई, वो उनको भी जानता है। जैसे मुस्तकबिल हमारे लिए गैब है, हमें क्या पता मुस्तकबिल में क्या है, आज शाम ही क्या होना है मुझे क्या पता, और फिर कयामत के दिन क्या होना है अल्लाह ताला को ये भी मालूम है। और ये दो सिफात अल्लाह ताला की लाई गई ना, फातिर समावाती वल अर्द और आलिम अल गैब व शहादा, कोई, और अगली भी आ रही है बात, लेकिन कोई इनमें अल्लाह का शरीक नहीं है, ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई फरिश्ता, कोई भी आसमान और जमीन की पैदाइश में अल्लाह ताला का साजी, उसका शराकतदार, पार्टनर नहीं था। और दूसरे गैब का जानने वाला कोई नहीं है। ये जो हम अकीदा अगर रखते हैं, यहाँ ये जो हमें सोच आती है कि फलां मेरे हाथ की लकीरें देख के मेरा फ्यूचर बता देता, तो फ्यूचर गैब है, अल्लाह उसको जानता है सर। और इसी तरह और भी कोई भी चीज, ये चीज ठीक है हमारे लिए करनी या नहीं ठीक, फलां बाबे के पास चले जाओ वो बताएगा, ये कारोबार करूं या नहीं करूं, मेरा वीजा कब आएगा, शादी इससे करनी सही है या नहीं सही, ये सब गैब की बातें हैं। अपने ईमान को मत गंवाएं ऐसे लोगों के पास जाके, वो कार्ड से कोई बता रहे हैं, कोई किसी चीज से, पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या चीजों, और कोई तो अल्लाह माफ करे कुरान से फाले निकालने खोलने बैठ जाते, कुरान को पता नहीं खुद ही बना के फाल निकाल रहे हैं जी हम कुरान से, गैब को मालूम करने के लिए। गैब का जानने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, तो अगर कुरान को इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया तो गलत इस्तेमाल किया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें सिखाई हैं हमें, ना सहाबा ने कभी की, एक बिदत शुरू कर दी। आलिमल गैबी व शहादा, अल्लाह ताला है गैब का भी और हाजिर का भी जानने वाला। इसी तरह माजी भी हमसे गैब है, हमें क्या पता आज से 1000 साल पहले इस जगह पे क्या हुआ था, इस बंदे के साथ, फलां के साथ क्या हुआ था, इसकी जिंदगी क्या थी, ये सब हमसे गैब है। वो उसका जानने वाला कामिल इल्म रखता है, कामिल कामिल, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, पूरा का पूरा, इन एंड आउट उसका जानने वाला, जाहिर और बातिन को जानने वाला। हमारे तो सामने भी कोई बैठा हो, उसके दिल में क्या है वो हमसे गैब है ना, वो हमारे सामने है, उसका दिल तो नहीं खोल के देख सकते, वो हमारे लिए गैब है, अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाहु अकबर, अंत तहकुमु बैन इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून, तू फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान उन चीजों में जिनमें वो इख्तलाफ करते थे, अल्लाह तू ही फैसला करने वाला है अपने बंदों के दरमियान। अब ये देखें, ये कि अल्लाह ताला ही फैसला करेगा, किसी और को फैसले की कुदरत हासिल नहीं, किसी और को इख्तियार नहीं कि वो फैसला करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जब तहज्जुद की नमाज में पढ़ते थे तो किस दुआ से शुरू करते थे, ये किसी ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की ये दुआ बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रील व मीकाईल व इसराफील फातिर السماواتي والارض, यही वाली आयत, आलिम الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون, एतिनी लिमा اختلف فيه, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे देना इसमें जिसमें के लोग इख्तलाफ करते, मिन الحق بإذنك, हक की बात की अपने इजन से, इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिराते मुस्तकीम, तू जिसको चाहे हिदायत दे सिराते मुस्तकीम की। इस ये यानी ये आयत उसमें आती और ये एक और भी दुआ, लंबी दुआ है, लेकिन उस हदीस के एक रावी मुरसल हैं, तो इसलिए वो मैं नहीं बयान करूंगी, मगर पता चलता है कि इस आयत की वैसे बहुत अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए क्योंकि ये इससे दुआएं भी कबूल होती हैं। और किसी ने पूछा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि, एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने ये फरमाया कि ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा फातिर समावाती वल अर्द आलिमल गैब व शहादती ला इलाहा इल्ला अंत रब्ब कुल्ली शैई व मलीका अऊज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी व शर्री शैतानी व शिर्किही व अक्तरिफ अला नफ्सी सुअन औ अजुर्रहु इला मुस्लिम। ये सुबह शाम की दुआओं में भी आता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल मैं सुबह शाम क्या पढ़ूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था। तो इससे पता चलता है कि इस आयत की खास कोई अहमियत ही है ना। और मैंने आपको जैसे ये भी बता दिया कि ये दुआएं भी इससे कबूल होती हैं। तो बगैर नमूने के जो पैदा करने वाला और जो जानने वाला है गैब और हाजिर का, इसी तरह एक रिवायत में ये भी आता है कि जो बंदा इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने फरिश्तों से फरमाएगा कि मेरे इस बंदे ने मुझसे अहद लिया था, इस अहद को पूरा करो, जो मैंने आपको तहज्जुद के वक्त की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद में ये दुआ करते थे और उसके अंदर ये आयत है वलो अन्ना लिल्लदीना ज़लमू मा फिल अर्दी जमीअ मिथलहु माहु लफ्तदौ बिही मिन सूइ अल-अज़ाबि यौमल क़ियाम। और अगर चाहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, जो जो अगर जो उनके जिनके पास जिन्होंने जुल्म किया, अगर उनके पास वो सब कुछ है जो जमीन में है, यानी जितने खजाने जमीन के, और इसकी मानिंद है कि वो चाहेंगे कि वो फिदिये में दे दें इस सब कुछ को कयामत के दिन के अजाब से बचने के लिए और बुरे अजाब से बचने के लिए, अजाब तो होता ही बुरा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए वो कितना बुरा होगा, ये लाया गया कि अगर वो चाहेंगे कि रूए जमीन में जितनी चीजें हैं, अव्वल तो किसी के पास सारी जमीन है ही नहीं, कोई भी मालिक नहीं, लेकिन अगर कोई मालिक हो भी और उस दिन उसको कहा जाए कि क्या ये सब देने को तैयार हो, तो वो देने को तैयार हो जाएगा, कहेगा बस मुझे आज के दिन के इस अजाब से बचा लो, सिर्फ इस अजाब से बचा लो, यानी इतना ज्यादा इंसान तकलीफ में होगा। देखिए इस दुनिया में भी किसी को कोई बीमारी लग जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है, सब कुछ कर देता है, कहता बस मैं बच जाऊं, इस बीमारी से किसी तरह निकल जाऊं। तो कयामत का दिन का अजाब तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, उससे बचने के लिए तो इंसान कहेगा मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। तो इंसान ये सोचे कि उस दिन अगर सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा इस अजाब से बचने के लिए, तो क्यों नहीं इसी दुनिया के अंदर इंसान कुछ अल्लाह की खातिर लगा दे ताकि वो कयामत के दिन के अजाब से बच जाए। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला पूछेगा जहन्नुमी से, या ऐसे जो जहन्नुम में पड़ा होगा, अल्लाह ताला उसे पूछेगा कि क्या आज के दिन के अजाब से बचने के लिए तुम कुछ देने को तैयार हो? ये अगर तुम्हारे पास सारी जमीन की सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएं तो क्या तुम देने को तैयार हो? वो कहेगा हाँ मैं देने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तो तुमसे इससे बहुत कम मांगा था। क्या मांगा था अल्लाह ताला ने? सिर्फ ये कि तुम तौहीद पे रहना, सिर्फ अपनी फरमाबरदारी इस चंद दिन की जिंदगी में मांगी थी, वो भी नहीं तुमसे हुआ। अब तुम सारी जमीन और जो कुछ इसमें है सब देने को तैयार हो गए, इसे बहुत कम था जो वहां पे था जो दे सकते थे और इंसान बच सकता था। अल्लाहु अकबर। तो इंसान उस वक्त इतना कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून, अल्लाहु अकबर। और जाहिर हो जाएगा इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से जिसका वो अंदाजा भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। यानी एक तो पहली बात यह कि इंसान सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा, सब कुछ देने को, हत्ता के यानी जमीन की चीजें या खजाने। तो ठीक है, अगर इंसान के पास दुनिया में भी पैसा हो तो जैसे मैंने आपको कहा हर चीज लगाने को तैयार हो जाता है, अपने आप को किसी बीमारी से बचाने के लिए, या यहां तक तो समझ आती है। लेकिन सूरह मारिज में तो इससे भी ज्यादा बड़ी बात है। यो बस रूनहुम या वद्दुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौम इदिन भी बनी व साहिबती वाकी व फसीलती हिलती तू भी व मन फिल अर्दी जमीअन सुम यू जी। कि इंसान कहेगा, उसको दिखाए जाएंगे, वो कहेगा अल्लाह अकबर, वो कहेगा या अल्लाह आज मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे मेरा कुंबा कबीला सारा, और जो जमीन में है, जो या अल्लाह इन सब को जहन्नुम में बेशक झोंक दे, या अल्लाह मुझे बस बचा ले, मुझे बस बचा ले। अल्लाह अकबर। माल इंसान को बहुत प्यारा होता है, वो भी देने को तैयार हो जाएगा। और दूसरे ये प्यारे रिश्ते, माल और औलाद को ही फितना कहा गया है ना कुरान में, यही आजमाइश है ना। इन्हीं को सबसे ज्यादा कहेगा कि ये पेशक ले ले, मगर मुझे निजात दे दे, मुझे छोड़ दे या अल्लाह। अब ये माल या दुनिया में जो कुछ है ये तो अल्लाह ताला फरमाएगा अगर मैं तुम्हें दे दूं तो वो फिदिये में देने को तैयार हो, कहेगा हाँ। हालांकि उसके पास होगा कुछ भी नहीं, वहां पे तो खाली हाथ होगा, नंगे पैर, नंगे बदन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कंगाल। उससे ज्यादा मुफलिस इंसान कभी नहीं होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, लेकिन कहेगा अगर मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं देने को तैयार। लेकिन ये तो नजर आ रहे हैं ना सामने, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, माँ बाप है, बीवी है, कुंबा कबीला सब खड़े हुए नजर आ रहे हैं ना। कहेगा या अल्लाह इन सबको डाल दे। इतना ज्यादा इंसान उस दिन डेस्परेट होगा अपने आप को बचाने के लिए। और ये जो आखिरी हिस्सा है इस आयत का, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये वो हिस्सा है जिसको बड़े हमारे जो असलाफ थे ना, ये पढ़ के परेशान हो जाते थे कि उस दिन इंसान के लिए वो कुछ जाहिर होगा अल्लाह की तरफ से जो वो तवक्को ही नहीं करता था, उसकी वो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये हो जाएगा। यानी आप समझे ना इस बात को कि दुनिया में इंसान ने जो नेकियां की उस पे वो बड़ा खुश, बड़ा उसको मान, बड़ी उसको बड़ा उसको कॉन्फिडेंस था कि जी मैं तो वहां पे बिल्कुल ठीक हूंगा, मेरे तो कोई मसला ही नहीं, मेरे लिए मैंने तो सीधे ही बस चले जाना, देखो तो मेरे पास ये भी नेकी। देखिए ना आप, हमारे भी जहनों में हमारी कोई नेकियां होती हैं जो बड़ी, हमें लगता है कि बस ये तो आई एम गुड, मैं मेरे पास ये भी तो चीजें हैं। लोग तो आजकल ये भी नहीं करते, देखो ना, मैं तो ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, बस इससे ही मैंने पार हो जाना, बस 5 नमाजें ही पढ़नी थी ना, ज़कात देनी थी, रोजे ना, मैं तो सारा कुछ करती हूँ। तो आपसे सलम ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा, तो मैं बस ठीक है, मैं मुझे क्या है फिर, मुझे क्या फिक्र हो गई, ऐसे ही ये डराते रहते हैं। लेकिन ये आयत का हिस्सा, वह बदा लहुम मिन अल्लाह मा लम यकूनू यहतसिबून, उनके सामने वो जाहिर होगा अल्लाह की तरफ से जो वो वहमो गुमान भी नहीं था उनके। क्यों? इसलिए क्योंकि इसने कभी सोचा नहीं था कि इसके अमल में कहीं इखलास की कमी है, कहीं रियाकारी आ गई, कहीं तकब्बुर आ गया, या कहीं कोई शिर्क की आमेजिश आ गई, या कोई अकीदे में या कोई उसके अमल में कहीं कोई कमी थी, और ये समझता रहा जी मैं तो बहुत अच्छा हूं। इसने तो सोचा कि मैं पार हो जाऊंगा, इसने तो कभी तवज्जो ही नहीं दी, या इसने कभी सोचा ही नहीं कि ये तो मेरे जो 7 चीजें लग गई हैं, मतलब कहीं शिर्क आ गया, कहीं बिदात आ गई, कहीं रियाकारी आ गई, कहीं कोई और ऐसा अकीदा आ गया जो अल्लाह ताला के बारे में या आखरत के बारे में, या ऐसा कोई अकीदा बद अकीदा अपनी तरफ से घड़ा हुआ था वो था शामिल, कोई शिर्क किया जो था, या कहीं रियाकारी जो थी, या कोई ऐसी चीज जैसे सारा का सारा जो भी नेक अमल था उसके ऊपर पानी फेर दिया। इस उसको तो कब तवक्को ही नहीं थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है।
यानी कॉट विथ सरप्राइज, ये क्या हो गया? समझ रहे हैं आप, ये इतनी डरा देने वाली बात है। मोहम्मद बिन मुनकदिर जो ताबीन में से थे, मैंने एक अपने दर्स में भी इसका बताया था, तो वो रातों को कयाम किया करते थे, लंबा कयाम। तो कयाम करते करते ना सूरह जुमर की तिलावत करने लगे, तो जब पढ़ते पढ़ते यहां पे आए ना, वह बदा लहुम मिन अल्लाह मा लम यकूनू यहतसिबून, तो रोने शुरू हो गए। इतना रोए कि उनके घर वाले जो थे वो परेशान हो गए कि हाय ये क्या क्या बात हो गई। जब वो घर वाले जो थे ना उस जमाने के अंदर अबू हाजिम बड़े आलिम थे, उनको बुलाने के लिए गए, भैया आप आए और आके इनको कुछ तसल्ली दें, इनका तो हाल बुरा हो गया रो रो के। तो उनको बुलाया गया, वो आए, इन्होंने अपनी नमाज खत्म की, उन्होंने पूछा कि भाई क्यों आप इतना रो रहे हैं? फरमाया मैंने एक आयत पढ़ी जिसने मुझे रुला दिया। तो उन्होंने पूछा कौन सी आयत, तो यही बताई। तो अबू हाजिम भी जारो कतार रोने लगे कि तवक्को क्या थी, एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मेरी नेकियां बहुत हैं, मगर अपनी कमियों को ताहियों के ऊपर तवज्जो ही नहीं थी, पता ही नहीं था। ये ना हो कि इंसान सोचता कुछ रहे और वहां पे कुछ और हो जाए। वाकई ये मकाम रोने वाला है कि हमें नहीं मालूम। इसीलिए तो ये लोग डरते थे ना कि जब तक पुल सिरात से पार होके जन्नत तक नहीं पहुंच जाते, जन्नत में वही है ना उनकी बात हजरत उमर की, के मेरा एक कदम जन्नत के अंदर हो और एक बाहर हो, तब भी मुझे डर होगा कि कहीं ये ना हो कि मैं बाहर रह जाऊं। कि जब तक जन्नत के अंदर दाखला ना हो जाए तब तक इंसान कोई सेफ नहीं है। नहीं, इंसान सोच रहा है कि जी मैं तो मरूंगा तो मेरे तो आते ही जन्नत के फरिश्ते आ जाने हैं जन्नत के कफन लेके, और आगे मेरे लिए प्रोटोकॉल होगा और मेरे लिए ये खुशखबरियां हैं, और मैं तो कलमा गो हूं और कब्र का अजाब भी कुछ नहीं, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो सब कुछ पूरी करता हूँ सही, और उधर जान निकले और उधर कुछ और हो आगे, तो क्या हाल हो? आप कुछ सोचिए ना, कुरान कहता है आमिलतुन नासिबा, वो मेहनतें कर कर के थक गए होंगे, तस्ला नारन हामिया, मगर कयामत के दिन वो आग का लुकमा बनेंगे। अब वापसी भी कुछ नहीं है कि वापस जाके ही कुछ सही कर ले, अब करें तो करें क्या, आप तो कुछ भी नहीं रह गया। तो ये इतनी डरा देने वाली, इसलिए वो परेशान हो जाते थे। एक था भाई मौत के वक्त ये पढ़ के रो रहे हैं, मौत का वक्त है तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता अल्लाह की तरफ से कौन सी हालत मेरे सामने आ जाए जिसका मैं वहमो गुमान भी ना करता हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो जाए। अल्लाह हू अकबर। वो लोग इस चीज से कितना डरा करते थे, हमारे जैसे लोगों के पास तो खैर कुछ है ही नहीं, हम तो सोचना भी महाल ही लगता है कि क्या हमारे लिए कौन से पता नहीं प्रोटोकॉल होंगे। वो तो इतना करते थे, फिर वो डरते थे इस बात के ऊपर कि पता नहीं आगे ये ना हो कि मेरे वहमो गुमान में भी ना हो और कुछ और हो जाए, आगे कहीं अजाब ना खड़ा हो, फिर कौन बचाएगा। अल्लाह अकबर। हम ऐसी बातों को सोचना ही नहीं चाहते क्योंकि तो हम तो ना कभी डरना चाहते हैं, अपने जहन के अंदर एक काका बनाया हुआ है उसी के मुताबिक जीते हैं, जब आएगी तो देखी जाएगी बस। जाके जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना वो इन आयात को लेके फिर इनके ऊपर तदब्बुर करते हैं, इतना सोचते हैं, ये ना हो कि हम शॉक्ड रह जाएं कि ये हो क्या गया हमारे साथ, ये ना हो कि ऐसी चीज हमारे सामने आ जाए जो अनइमेजिनेबल हो, जिसका कभी ख्याल भी नहीं आया था। अल्लाह अकबर। व बदा लहुम सैयात मा कसबू, और जाहिर हो जाएगी उनके लिए वो बुरे नताएज या वो बुराइयां या वो सजाएं जो उन्होंने कमाई की, वो सजाएं भी उनके सामने जाहिर हो जाएंगी जो वो उन्होंने कमाई की थी, यानी उनके अमाल का बुरा नतीजा अपने हाथ की कमाई थी ना, वो भी जाहिर हो जाएगी। यानी जो भी कब से जाहिर हो जाएगी, जिस वक्त से ही इंसान की मौत का वक्त शुरू होता है उस वक्त से ही जाहिर होने लगती, जब से फरिश्ते लेने आते हैं तभी से पता चलना शुरू हो जाता। इसका मतलब है कि जो कमाई हम कर रहे हैं इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ही, वो कहीं चली नहीं जाती, वो कहीं डिसअपियर नहीं हो जाती, हम तो करके भूल जाते हैं ना, वो अल्लाह ताला के हाँ भुलाई नहीं जाती, उसके तो रिकॉर्ड में है। और उसकी जब वो रिपरकशंस आएंगे, उसकी जो जो नतीजा आएगा, उसका जो उसके पीछे पलट के जो उसकी सजा आएगी, वो आज नजर नहीं आ रही, या हो सकता है आती भी हो तो कोई आके हमें बताता थोड़ी है कि ये इस चीज की सजा है। हो सकता है जो अंदर दिल में बेचैनी, बेकली और एक जिंदगी के अंदर मसाइब हैं, वो उन्हीं गुनाहों की वजह से हूं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ तवज्जो ना देते हो, हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता, अगर वहां पे पता चलेगा सब सामने आ जाएगा। वहा कभी हिम्मा के अनुभी यस्तहजी ऊन, और घेर लेगा उनको जो थे वो मजाक करते, जिस चीज का वो मजाक करते थे वो चीज उनको घेर लेगी, इसी चीज का मजाक करते थे ना कि कहाँ उठाए जाएंगे, कैसे होगा, लो ये हड्डियां ये उठेंगी, ये जो भुरभुरी हड्डियां, ये जो मट्टी हो गई ये उठेंगी, यानी पर्दे उठ जाएंगे ना जब गैब के, तो सब चीज सामने आ जाएगी, अल्लाह के अजाबों का मजाक, बास बादुल मौत का मजाक, उस दिन के जो सजाएं हैं उनका मजाक, जहन्नुम में दार हो गए हैं, जहन्नुम के अंदर दरख्त है, लो जी दरख्त भी उगने लग गए जहन्नुम के अंदर। इंसान तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अजाब कैसे होंगे और कितने शदीद होंगे, इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वहां देखें अल्लाह ताला बड़ा है ना, तो उसकी सजाएं भी बड़ी हैं। दुनिया में ये छोटी सी चीज हो जाती है ना, छोटी सी चीज, हम कितनी तकलीफ में आ जाते हैं, थोड़ी सी मसलन कहीं दर्द ही हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तो कितनी तकलीफ में होते हैं। अल्लाह ताला सबको तकलीफों से महफूज रखे, लेकिन कभी दर्द हो और आप बेहाल हो रहे हो तो जरूर सोचा करें कि कयामत के दिन के अजाब कैसे होंगे, हम इस तकलीफ के ऊपर तो इतने तरह की चीजें हमारे पास पड़ी होती हैं, और नहीं तो हम ईआर में चले जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, वो ही कोई इंजेक्शन लगा देते हैं कि जो पेन किलर होता है कि दर्द खत्म हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं दर्द को मिटाने के लिए यहां पर, मगर उस दर्द को मिटाने के लिए कौन सी चीज होगी, घेर लेगा उनको, इससे पता चलता है कि अब कहीं निकलना मुमकिन नहीं है, घेर लेगा उनको जो जिसका वो मजाक उड़ाते थे, यानी वो सजाएं उनको घेर लेंगी, अब भाग नहीं सकते, अब इसकी दवा कोई नहीं, अब इसका मदावा कोई नहीं, अब इसको फिक्स करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। ये तो वहमो गुमान में भी नहीं थी, आए वो वाली जो बुराई की थी इसका मुझे ये मिल जाएगा, वो जो मैंने एक मजाक उड़ाया था, वो जो मैंने एक बात कही थी, मैं तो वैसे ही कह दी थी, हदीस में आता है ना इंसान ऐसे ही मुंह से बोल देता है और उसके इतने बुरे नताएज होते हैं, अल्लाह ताला को इतनी बुरी उसकी ये बात लगती है कि वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना लेता है, अब उसको पता भी नहीं है। तो उन चीजों पे इंसान कहाँ तवज्जो करता है, हाँ उसकी तवज्जो इस पे जरूरत थी कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूं, ये जरूर उस पे तवज्जो है, इन चीजों को तो सोचता भी नहीं। तो उनके सामने ऐसे हालात आएंगे जिनका उनको पता ही नहीं होगा, शायद अगर दुनिया में पता चल जाए तो इंसान कितना रोए और कितनी इस चीज के ऊपर माफी मांग ले, लेकिन टाइम इज गॉन, दैट वक्त जा चुका, अब वापसी तो है नहीं ना तौबा है, तो फिर उनको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हाँ कभी हिम, जब इंसान इस चीज के ऊपर गौर करते ना, एक एक आयत को लेके बैठ जाए, कहाँ हम आगे चल सकते हैं अगर एक एक आयत को लेके बैठे, हाँ कभी हिम घेर लेगा उनको, अब घेरा किसका है, ये कोई पुलिस का घेरा नहीं जैसे कोई निकल के मुजरिम भाग सकता, ये अल्लाह ताला की सजाएं हैं जो घेर लेंगी। जब इंसान मजाक उड़ाता है अल्लाह के दीन का, या दीन वालों का, या अल्लाह के शायर का, तब नहीं वो सोचता कि उस दिन जो मजाक उड़ाए होंगे वो ही घेर लेंगे, उनका नतीजा देखना पड़ेगा। फैजा मसल इंसान दुर्रुन दआना, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है ना, पुकारता है हमें, ये इंसान की फितरत है। और इवन जो काफिर भी होते हैं वो भी अल्लाह अल्लाह करने शुरू हो जाते हैं, गॉड, ओ माय गॉड, ये कहने शुरू हो जाते हैं। गॉड का आज तक नाम नहीं लिया, लेकिन उस वक्त आ जाता है ओ माय गॉड। मुसीबत के बाद इंसान का अमूमी तौर पे यही हाल होता है। सुम्मा इदा खवलनाहु निअमतन मिन्ना कहला इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, जब फिर हम उसको अता करते हैं कोई नेमत अपनी जनाब से, अपनी तरफ से, यानी नेमत अल्लाह की तरफ से आती, मिन्ना हमारी तरफ से, तो वो क्या कहता है? वो नहीं कहता कि अल्लाह की तरफ से आई है, तो क्या कहता है? मुझे तो मेरे इल्म की बिना पे दी गई है। दो मतलब है इसके, यानी पहला मतलब इल्म की बिना पे दी गई है, जैसे कि मेरे इल्म की वजह से, ठीक है। दूसरा मतलब यानी मैं डिजर्व करता था, अल्लाह ताला ने मेरे काबिलियत को देखा था, मेरे इल्म को देखा था, तो इसलिए मुझे दी है। तो दोनों माने में क्या है कि अपनी बढ़ाई, मेरा इल्म, यानी इल्म से मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरी काबिलियत, मैं जो चीज हूं मेरी अपनी वजह से। जैसे बाज दफा लोग कहते हैं सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड क्या होता है भाई, यानी वो कहते हैं उसको जिसको पहले से कुछ नहीं मिला, इसने खुद ही अपनी मेहनत से सारा बनाया है, तो ये सेल्फ मेड है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, वो तो नहीं कहीं पहुंचते, ये पहुंच गया, इसका मतलब अल्लाह ने दिया है ना। लेकिन वो क्या सोचने लगता है, मेरा अपना है ये, मेरी अपनी मेहनत है जी, मेरी अपनी काबिलियत है, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, मैंने देखा, मैं इस चीज के अंदर, मुझे बड़ा पता है, मुझे बिजनेस के गुर बहुत आते हैं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स के हैं, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी डिग्री थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा, ये मुझे बहुत तरीके आते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पहुंचा। कितनी दफा इंसान अपने मुंह से खुद ये कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है जब तकलीफ थी तब तो फौरन भागे भागे आ गए, और जब नियमत का अल्लाह ताला ने मजा चखाया तो उस वक्त अल्लाह याद नहीं आता, उस वक्त अपनी काबिलियत याद आने लगती। और ये जो लफ्ज है ना खवलना, इसका मतलब क्या है, बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी इवज के, बदले के, अपनी तरफ से अता करना। यानी ये नहीं कि तुमने कुछ किया, कोई ऐसा तुम्हारा कारनामा था जिसकी वजह से अल्लाह ताला अता कर रहा है, बड़े मेहनती या बड़े अल्लाह के, अल्लाह अल्लाह करने वाले, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से अता किया, तुम्हारी नहीं कोई काबिलियत थी, अल्लाह ने अता किया, तो तुम क्या कहना शुरू कर देते हो, बस मेरे मेरी अपनी थी। जबकि कहना क्या चाहिए, जब भी इंसान को नेमत मिले तो करना क्या चाहिए, शुक्र, शुक्र अदा ज्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अमूमी तौर पे देखें जितनी नेमतें ज्यादा हैं उतनी नाशुक्री ज्यादा है, देख ले आप ये नोट करें ना, आप दुनिया के अंदर आप अपने इर्द गिर्द देख लें, जिनके पास जितनी ज्यादा नेमतें नाशुक्री उतनी ज्यादा, अपने घरों के अंदर देख लें, अपने बच्चों को देख लें, उनको छोटी मोटी कोई चीज देते वो कहते ये क्या चीज आपने हमें दे दी, ये कौन सी ऐसी, आप उनको कोई गिफ्ट दे देना कोई छोटा मोटा तो वो उनके नजदीक कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इवन अब तो इतना बच्चों को हमने पैम्पर कर दिया है कि उनको कोई खाने पीने की भी चीज आम दे दे तो उनको इसकी कोई वैल्यू ही नहीं लगती, कहते ये तो हम रोज ही खाते हैं ये पिज्जा या आइसक्रीम है। एक वक्त होता था छोटे बच्चों को आइसक्रीम देते थे, कोई कैंडी देते थे, उनको कोई इसकी वैल्यू होती थी, अब वो कहते ये क्या, उस पे भी वो खुश नहीं होते, ना शुक्रिया ना शुक्रिया। अब बच्चों से बड़ों तक देख ले, ना शुक्री ना शुक्रिया, जितनी नेमते ज्यादा है ना शुक्री भी ज्यादा है, छोटी मोटी चीज तो अब नाक पे नहीं है चढ़ती, अब कोई बहुत ही आला कोई चीज हो तो फिर है, कोई बंदा ऐसा भी है जिसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो शुक्र अदा करता है, और कोई ऐसे हैं कि जिनको 4 4 खाने भी सामने रखे हुए हैं, फ्रिज भी भरे हुए हैं, तो कहते हैं क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं खाने को, आज तो कुछ खाने को है ही नहीं। नेमत की शुक्रगुजारी हमारे अंदर खत्म होती जा रही है। नेमत की शुक्रगुजारी कैसे होती है, क्या हक है शुक्र करने का, कैसे शुक्र अदा होता है, दिल में भी माने कि अल्लाह की तरफ से है, मेरी अपनी नहीं है काबिलियत, मैं डिजर्व नहीं करती थी, ये इंसान का आई डिजर्व इट। हम तो हर चीज को अपना हक समझते हैं ना, यानी खाने पीने से लेके ये आजा पैसा जितनी चीजें हैं हम सब समझते हैं कि ये हमारा हक है, हालांकि दिल में ये होना चाहिए कि मेरा हक नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। नंबर 2, जुबान से इसका इजहार करना कि ये अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अता कर दिया। नंबर 3 क्या, अमल से इसका इजहार करना। अमल से कैसे इजहार करेंगे, इताअत करके अल्लाह ताला की। इताअत बढ़ती है कि नहीं, जिस वक्त की नेमत मिलती है इताअत बढ़नी चाहिए ना, बढ़ती है क्या कम हो जाती है। जिस दिन ज्यादा पेट भर के खाए उस दिन आके एक नमाज पढ़ने को भी दिल नहीं करता, दिल करता बस सो जाए लेट जाए। दावत से आए बहुत अच्छा खाना खाया, इतनी नेमतें मिली, हंसे बोले वापस आए, और उसके बाद क्या हालात होते हैं हमारे। शुक्रगुजारी होनी चाहिए ना, इमीडिएट क्या होना चाहिए, बात की बात तो छोड़े, उस वक्त भी एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी नेमतें दी, वहां से वहां तक बुफे लगा हुआ था, इतनी डिशेस मेरे सामने, जो मर्जी खाओ जो मर्जी छोड़ो। इसके अलावा जितनी नेमतें हैं, सेहत एक नेमत है, उसकी कितनी शुक्रगुजारी हो रही है कि इताअत बढ़ जानी चाहिए, लेकिन कितनी शुक्रगुजारी होती। लेकिन आप मैंने तीनों चीजें आपको बताई, इन तीनों चीजों से शुक्र बनता है, सिर्फ ये नहीं है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह की मैं तस्बीह कर लेती हूँ और उसके बाद मेरी जो मर्जी आए वो मैं करूँ, अल्लाह की इताअत तो कहीं भूली भी है, ये शुक्रगुजारी नहीं है। जो देने वाला है उसके आगे झुक जाना शुक्रगुजारी है, जो मुनाइम है उसका एहसान मानना शुक्रगुजारी, जिसका एहसान होता है ना इंसान उसके आगे जुबान नहीं खोल सकता, जिसका एहसान होता है ना इंसान उसके आगे सर नहीं उठा सकता। हम तो ना एहसान मानने वाले हैं, एहसान फरामोश, ना एहसान को मानते हैं, ना हमें शुक्रगुजारी करनी आती है, सच बात। इसीलिए बातें बहुत आती हैं, बहुत बातें आती हैं, ऐसा क्यों, वो क्यों, ये क्यों, इतनी ऑब्जेक्शंस हैं। जिसका आप एहसान मानते हो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे क्या, हाँ उसके ऊपर कहेंगे क्या कि ये क्यों और वो क्यों। तो अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो शुक्रगुजारी नाम की चीज नहीं है, शुक्रगुजारी है कि इंसान फिर उस अल्लाह ताला को भूले नहीं कभी अपनी इस जिंदगी के अंदर। शुक्रगुजारी है कि नेमतें बढ़ती जाएं तो इंसान झुकता जाए। हम देखते हैं कि जिनके पास कम है वो फिर भी सबर और शुक्र के साथ रह रहे हो, जिनके पास ज्यादा है उनके मुंह गिले शिकवे करने से ही बाज नहीं आते, वो उतने ही ज्यादा हर वक्त शिकायती मोड में रहते हैं, उनको नेमते नजर ही नहीं आती। नजर आएंगी तो शुक्र अदा करेंगे ना, नजर आती ही नहीं है, ब्लाइंड है उस तरफ से, क्या नजर आता है, ये क्यों खराबी हो गई, इतनी सी भी चीज क्यों इधर से उधर हो गई, ये क्यों कमी हो गई, ऐसा क्यों हुआ, छोटा सा क्यों नुकसान हुआ, करोड़ों में 1 रुपए का नुकसान हो जाए तो वो नजर आएगा, वो करोड़ नजर नहीं आएंगे। इसी तरह हमारे पास अनगिनत नेमतें जिनको हम गिन भी नहीं सकते वो नजर नहीं आती, हाँ वो कहीं एक जो कमी है वो जरूर नजर आती है। और ना शुक्री किसको कहते हैं, तो जब नेमत नहीं होती या तकलीफ पहुंचती है बहुत पुकारता है, नेमत मिल जाती है तो उज्ब का शिकार हो जाता है, यानी खुद पसंदी का, पसंदी, ये खुद पसंदी है कि मैं आई डिजर्व इट, ये खुद पसंदी कि मेरा इल्म, जैसे कारून ने कहा कि ये मुझे दिया गया मेरी अपनी काबिलियत की वजह से दिया गया, और अल्लाह ताला ने फिर उसको कैसे धंसा दिया जमीन में खजानों समेत। और हम तो रोज कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने पकाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये मेरा हुनर है, मुझे तो शुरू से शौक था, आखिर मेहनतों से हमने कमाइयां की नहीं। बल ही फितना तू वला किन्ना अक्सर हम ला यालमून, हालांकि ये एक फितना है। फितना से मतलब क्या? इतना वो नहीं जो हम उर्दू में बोलते, इतना से मतलब क्या, यानी ये तो आजमाइश है, टेस्ट है, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आती बात कि ये टेस्ट होता है कि अल्लाह ताला जब तकलीफ देता है तब भी आजमा रहा होता है, और जब नियमत देता है तब भी आजमा रहा होता है कि अब मेरा बंदा कहता क्या है, अब मुझे याद करता है कि नहीं, अब मुझे पहचानता है कि नहीं, कि वो मेरा एक रब है जिसने मुझे ये नियमत दी, मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, उसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, अल्लाह मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं कि मैं तो सजदे में भी पड़ी रहूं तो अल्लाह तेरा मैं शुक्र नहीं अदा कर सकती। क्या ये रवैया है, या ये रवैया हाय क्या हो गया, लुट गए मारे गए, ये हो गया वो हो गया, अल्लाह ताला हमें माफ करे, लेकिन हम सब में ना शुक्रिया, अल्लाह ताला हमें माफ करे कि हम उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम बहुत ही कम शुक्र अदा करते, बहुत ही कम, अगर हम कर भी लें तो बहुत ही कम, हमें एहसास नहीं है जो नेमतें हमारे पास हैं, हमें नहीं है एहसास उनका, यकीन जाने वाकई नहीं है, हमें रियलाइजेशन ही नहीं है उस, ऑन टॉप ऑफ इट ये कह देना इन्नमा उतीत हुआ अला इल्म, मुझे तो मेरे इल्म की बिना पे मिला, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हर कोई अपनी अपनी गुण गा रहा है, अपनी तारीफें, अपने आप को समझना कि बस मैंने कुछ किया ही है तो फिर मिला है ना, हर एक को तो नहीं मिल जाता ना, मेरे अंदर तो कुछ होगा ही तो मिला है। नहीं, ये फितना है, ये आजमाइश है, कितनी दफा नेमत मिलने पे हम सोचते हैं ये एक टेस्ट है मेरा, यूं ही नेमत आती है, आपके हस्बैंड को बोनस मिले, आपके कारोबार में तरक्की हो जाए, आपको कोई खुशी मिल जाए, आप मसलन है कि आप के कोई प्रमोशन मिल जाती है आपको किसी जगह पे आप काम करते हैं, आपको अच्छा घर मिल जाता है, आप अच्छी जगह पे आपके रिश्ता हो जाता है, कितनी दफा पे ये होता है कि ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का करम है, मैं तो ये डिजर्व नहीं करती। आप देखिए बुखारी में एक रिवायत आती है बनी इसराइल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 आदमियों की ना एक कहानी बताई है, और वो हमें बहुत अच्छी तरह बताती है कि किस तरह ये चीजें हमारे लिए टेस्ट होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी था जो लेप्रसी वाला होता है पेशेंट, एक गंजा था, एक अंधा था, अल्लाह ने इन तीनों को आजमाना चाहा, एक फरिश्ते को इनकी तरफ भेजा, वो कोड़ी के पास गया और कहने लगा तू क्या चाहता है, उसने कहा मेरा अच्छा अच्छी खाल हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए, लोग मुझसे नफरत और कराहत करते हैं तो मेरा मतलब मैं सही हो जाऊं ना, फरिश्ते ने उस पर हाथ फेर दिया और उसके बदन का रंग अच्छा हो गया, खाल भी दुरुस्त हो गई। अब देख लें अब कितनी दफा है कि हम बीमार होते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला हमें सेहत दे देता है, शिफा दे देता है, उसके बाद हमें भूल ही जाता है कि किसी ने हमें शिफा दी, हम उसके बाद क्या कहते डॉक्टर बहुत अच्छा था, ये दवाई बड़ी अच्छी दवाई है, इससे मुझे आराम आया, नहीं अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, ये क्यों नहीं आता? आप जरूर किसी को बताएं, दवा का भी बता दें, डॉक्टर का भी रेफरेंस दे दें, लेकिन अल्लाह ने मुझे शिफा दी है, अल्लाह ने इस डॉक्टर के हाथ में मेरे लिए शिफा डाल दी, ये भी तो कह सकते हैं। तो वो उसका रंग अच्छा हो गया, खाल भी दुरुस्त हो गई, फरिश्ते ने पूछा दुनिया के मालों में से कौन सा माल तुझे पसंद है, वो कहने लगा मुझे ऊंट या गाय बैल बहुत पसंद, तो वो फरिश्ते ने उसको वो दे दिए और कहा कि तुझे इसमें बरकत हो। फिर वो गंजे के पास गया और उससे पूछा तू क्या चाहता है, गंजा कहने लगा अच्छे बाल होना, ये गंजापन जाता रहे, लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे मतलब बातें बनाते होंगे, फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और वो सही हो गया और बहुत अच्छे बाल निकला है। फिर फरिश्ते ने कहा, दुनिया का कौन सा माल तुझे पसंद है? वो कहने लगा, मुझे ये चीजें पसंद है, गाय बैल और गाबन गाय और ये। तो फरिश्ते ने कहा, अच्छा तुझे इसमें बरकत हो, और उसको दे दी। फिर वो फरिश्ता अंधे के पास गया, पूछा तू क्या चाहता है? वो कहने लगा, अल्लाह मेरी बीनाई मुझे फेर दे, मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पे हाथ फेरा, अल्लाह ने उसकी रोशनी वापस कर दी। और उसने पूछा कौन सा माल पसंद है? उसने कहा मुझे बकरियां पसंद है ये। फरिश्ते ने उसको भी बकरियां बहुत सारी दे दी, फिर ऊंटनी और गायें भी दे दी। तो इस तरह से सब के पास चीजें होंगी, फिर ऊंटनियां गायें और ये जितनी भी इनके पास थी, गंजे के पास भी, अंधे के पास बकरियां और उसके पास ऊंट, ये सब फरिश्ते ने उनको दे दिए। फिर उसके बाद अब इनका टेस्ट शुरू होता है। फरिश्ता, अब अल्लाह ताला ने उसको भेजा कि वो अपनी उसी सूरत में और शक्ल में, जिस शक्ल में पहले आया था ना जब उसने दिया था, उसी शक्ल के अंदर वापस आया। और कोड़ी से कहने लगा, मैं एक मोहताज आदमी हूँ, मुसाफिर, मेरा सामान सब चला गया, अब मैं बगैर किसी मदद के तेरी, और बगैर किसी की मदद के, तेरी इनायत के, अपने मैं ठिकाने नहीं पहुंच सकता, तो तू मुझे मेरी मदद कर, मैं तुझसे अल्लाह के नाम पे सवाल करता हूँ, जिसने तेरा बदन अच्छा किया, तेरी खाल दुरुस्त की, माल दिया, मुझे एक ऊंट दे दे जिसपे मैं सवार होके वापस अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, अपने वतन चला जाऊं। वो कहने लगा, भाई मैं तो बहुत कर्जदार हूं, बहुत आदमियों का मैंने भी देना है। फरिश्ते ने कहा, मैं जैसे तुझे पहचानता हूँ, तू कोड़ी था, सब लोग तुझसे घिन करते थे, तू मोहताज था, अल्लाह ने तुझे ये सब कुछ दिया। कोड़ी ने कहा, वाह, मैं तो बुजुर्गों के वक्त से मालदार चला आ रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा, खैर अगर तू झूठ बोलता है तो अल्लाह तुझे वैसा ही करते जैसा तू था। फिर वही फरिश्ता उसी शक्ल और सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही कहा जो कोड़ी से कहा था। गंजे ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसे कोड़ी ने दिया था, कि जी मैं तो खुद इतना वो हूँ, जैसे कोई मांगने आ जाए, पहले हम खुद के हालात हमारे ऐसे होते, फिर कोई कुछ मांग ले या कोई पूछ ले या कोई बात कह दे आपने ये कैसे किया, तो ना जी हमें तो पहले से ही आता है, हालांकि 10 दफा हमने वो चीजें खराब की होती हैं, हमें खुद नहीं आता था, हमने कितनी मुश्किल से, कितनी दफा फेल होने के बाद वो चीज सीखी, और उसके बाद आप कोई हमसे पूछा है तो नहीं नहीं हम क्यों बताएं, ये भी ना ले ले ये चीज, इसको भी ना आ जाए कहीं, कि हर जगह पे के करते हैं ना ये, नेमते ही है ना, चाहे वो कोई हुनर है, चाहे वो कोई इल्म है आपके पास, चाहे कोई तरकीब है आपके पास, चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास कोई भी एक बात है जो नफा पहुंचाने वाली है। अच्छा वो अब इसके पास गया, गंजे के पास, तो उसने भी ऐसा कहा, तो फरिश्ते ने उसको भी यही कहा कि अगर तू झूठ बोलता है ना तो अल्लाह तुझे भी वैसा ही करते जैसे पहले तू था। मैंने उससे कहा था ना मैं तो हमेशा से ऐसे था, लो मैं कब भी ऐसे था। अब अंधे के पास गया, उससे कहने लगा, मैं एक मोहताज हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरे पास सामान नहीं है, अब बगैर अल्लाह की मदद के और तेरी तवज्जो के मैं अपने वतन नहीं पहुंच सकता, मैं तुझे अल्लाह का नाम दे के वास्ता दे के कहता हूँ कि जिसने तेरी आंखें रोशन की, एक बकरी दे दे जिससे मैं सफर में अपने ठिकाने तक पहुंच जाऊँ। अंधा ये सुनकर कहने लगा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे बिनाई दी, मोहताज था, माल दिया, तू उसके नाम पे मांगता है तो जो तेरा जी चाहे तू ले ले, मैं आज तुझको कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह के नाम पर तू जो ले लेगा, तुझ पे कोई उसके ऊपर मैं सवाल नहीं करूंगा। फरिश्ता कहने लगा, मैं मोहताज नहीं हूं, अपनी बकरियां रहने दे, अल्लाह ने तुम तीनों को आजमाया था और तुझसे खुश हुआ और तेरे दोनों साथियों से नाराज हुआ। अब ये देखिए कहानी हमारे लिए कितनी बड़ी इबरत की कहानी है ना ये बुखारी में, कि हमारे पास कितने ऐसे मौके आते हैं, कोई फरिश्ता तो आ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह अपने कोई बंदे को मोहताज को भेज देता है या जिसको जरूरत होती भेज देता है। फिर हम आगे से क्या कहते हैं, लो जी हमारे तो जद्दी पुश्ती, हमारे पास ये जायदादें चल रही हैं, हम तो इतने अमीर पहले से हैं, हमारे पास तो इतना कुछ है, कहाँ हमने तो कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं देखा, हम तो ये थे, हम तो वो थे, कितनी अपनी बड़ाइयां बयान करती हैं, मुझे तो ये आता था बचपन से, तो मैं ऐसी थी, अपनी खूबियां ही बयान करते रहना, अल्लाह अकबर। हाँ लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि ये आजमाइश है, तो इसका मतलब है कि हमें इन अक्सरियत में शामिल नहीं होना जो ये नहीं जानते, हम तो इल्म ले रहे हैं ना, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी अल्लाह हमें कोई नेमत देता है तो अल्लाह ताला की वो नेमत हमारे लिए एक इम्तिहान है, और उस इम्तिहान पे हमने अल्लाह की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ना है। और अगर नेमते मिले और इंसान उल्टा शुक्रगुजारी छोड़ के नाशुक्री में और अल्लाह की नाफरमानी में गुनाहों में आगे बढ़ने लगता है ना, तो अल्लाह ताला की फिर ढील होती है, फिर अल्लाह ताला पकड़ता है तो बहुत सख्त पकड़ता है, जैसे इन दोनों को पकड़ा जो इस कहानी में आपको बताएगा। قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, इसी तरह की बातें इन लोगों ने भी की थी जो इनसे पहले थे। कौन लोग पहले थे? कारून ने की, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर क्या हुआ? फमा अग्ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, तो कोई काम नहीं आई उनको जो भी उन्होंने कमाई की थी। वो इल्म उनका कहाँ गया फिर? कहाँ काबिलियत की कारून की? हाँ, कहाँ गई वो जो बड़ी बातें वो कह रहा था कि ये तो मेरे इल्म से और मेरी काबिलियत से मुझे मिला है, वो कहाँ गई? वो सिर्फ बातें ही रह गई। फिर अपनी काबिलियत थी तो फिर बचा लेता अपने खजानों को। इसीलिए हमें यहां से पता चलता है, जब इंसान से कोई चीज जाती है तो पता चलता है कि अल्लाह ही देने वाला है और अल्लाह ही वापस ले सकता है। वो तो ऐज़ु मन तशा हुआ तो ज़िल्लु मन तशा हुआ, चाहे तो इज्जत दे दे, चाहे तो जलील कर, चाहे तो मुल्क दे दे, बादशाहत दे दे, चाहे तो बादशाहत वापस ले ले। बोलना तो आसान है, इसका यकीन मुश्किल है, क्योंकि जब हमें चीज मिलती है तो हमें लगता है मेरी काबिलियत थी, जब चीज जाती है तो फिर हम रोते हैं अल्लाह तूने मुझसे क्यों छीन ली है, और फिर मायूस होके बैठ जाते हैं, फिर अल्लाह से गिले शिकवे करने लगते हैं। असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू, बार बार देखे यही बात आ रही है, उनको पहुंची जो उन्होंने कमाई की, जो बुरे आमाल उन्होंने किए थे उनके आमाल की ही सजा उनको पहुंची, जो पहले गुजरे हैं उनको भी उनके आमाल के बुरे नताएज पहुंचे। आप देख लें कितनी कौमों के ऊपर जो भी अजाब आए वो उनके आमाल का ही तो नतीजा थे ना। हम पढ़ चुके क्या क्या उन्होंने अमल किए और उनको जो सजाएं मिली वही उन्होंने देखी। किसी को भी अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं पकड़ा है कि कोई उनका कसूर था ही नहीं और उनको ऐसे ही पकड़ लिया गया। जो उन्होंने किया, वल्लदीना ज़लमू मिन हाउलाई सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उन इन लोगों में से, यानी कौन? जो मुशरिकीन मक्का है, इनमें जो काफिर हैं, ये जो जो कुरैश मक्का है इनमें जो काफिर हैं, इन्होंने जो जुल्म किया यानी शिर्क किया, सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू, अनकरीब पहुंचेंगी उनको सजाएं जो उन्होंने कमाई की है। वमा हुम बिमुअज्जिज़ीन, और ये हमें आजिज करने वाले नहीं है, ये भी देख लेंगे, यानी पिछली कौमों ने भी देखे अपने बुरे अमाल के नताइज, ये भी देख लेंगे, अगर ये कुफर से बाज ना आए तो इनके ऊपर भी सजा आएगी, यानी मुख्तलिफ अजाबों की सूरत में, और ये दुनिया में भी आ जाती होती है और आखरत की तो है ही, आपको पता है वो तो दिन ही वो है कि जिसमें सबके साथ इंसाफ होगा। जजा उ सैयाती सैया तो मिसलुहा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि बुराई का बदला उसकी मिसल ही है, उसकी मिसल बुराई ही है, ऐसे कभी नहीं होगा कि गुनाह इंसान करे और उसको सवाब मिलना शुरू हो जाए, कभी भी नहीं होगा। नाफरमानियां करे अल्लाह की और अल्लाह ताला का बड़ा मुकर्रब और पसंदीदा बंदा बन जाए, ऐसे कैसे बात है ना? हम सोचते हैं कि पता नहीं हम करते रहेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, वो मैंने जैसे आपको बताया कि चूंकि हमारे सामने नतीजा नहीं आ रहा होता ना, तो हमें लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हमारे सामने कोई सजा नहीं आ रही होती फौरी तौर पे, तो हमें समझ नहीं आती कि ये मेरी बुराइयों की नतीजे है। या हमें उसी वक्त अल्लाह माफ करे हम अंधे नहीं हो जाते, बहरे नहीं हो जाते, या हमारे साथ कुछ और ऐसा चीज नहीं हो जाती, तो हम समझते कुछ नहीं होना। देखिए अल्लाह ताला बताता है, वो आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, वो बस स्टोर हो गई है, वो रिकॉर्ड हो गई है चीज। अब इट डिपेंड्स, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर उसकी सजा आनी ही आनी, अल्लाह इसके इंसान माफी मांग ले अल्लाह ताला से रो रो के, वो या तो इस दुनिया में आ जाएगी नहीं तो फिर मौत के वक्त आ जाएगी, कब्र के अंदर आ सकते हैं कब्र के अजाब की सूरत में, हशर के दिन आ सकता है हशर की परेशानी और सख्तियों की सूरत में, पुल सिरात के ऊपर आ सकती है उसकी सजा, पता है ना आपको, कुल सिरात पे भी सिला रहमी जिन्होंने नहीं की होगी, अमानत में खयानतें की होंगी, वहां पे आ जाएंगी ये चीजें, आंकड़े उनको पकड़ लेंगे और जहन्नुम में डाल देंगे। तो वो आनी जरूर है, कहीं ना कहीं आएगी। तो ये इग्नोर कर देना कि कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। होगा तो जरूर, मगर अब किस वक्त होगा ये फिर इंतजार करूं। दुनिया में हुआ तब भी नहीं सहा जा सकता हमसे, और आखरत के तो खैर अजाबों का तो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए इंसान को गुनाहों से डरना चाहिए, बचना चाहिए, इसीलिए इंसानों को गुनाहों से भागना चाहिए दूर, इसीलिए गुनाहों पर दलेर नहीं होना चाहिए, इसलिए गुनाहों को इजी नहीं लेना चाहिए कि ये बहुत कोई बात ही सभी कर रहे हैं ना तो क्या हो गया। डोंट टेक इट सो इजी, क्या हो गया फिर हमसे नहीं बर्दाश्त होगा जो होगा फिर। अवलम यालमून अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशा हो या कदर, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला जिसका चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, जिसका चाहता है तंग कर देता है। क्या ये अल्लाह ताला की रजा की निशानी है कि वो किसी का कुशादा कर दे? बिल्कुल भी नहीं, वरना अंबिया फकरों फाके में जिंदगी ना गुजारते। क्या ये अल्लाह ताला की रजा की निशानी है कि वो नाराजगी की निशानी है कि वो तंग कर दे किसी का रिस्क? नहीं, ये अंबिया की मिसाल इसमें आती है कि अंबिया को के लिए अल्लाह ताला ने रिस्क को तंग किया, लेकिन अल्लाह ताला की रजा की ना उसकी नाराजगी की ये कोई निशानी नहीं। जिनका अल्लाह ताला रिस्क कुशादा कर देता है उनसे अल्लाह राजी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, यानी ये रूल ऑफ थंब नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है जिसकी बेस पे हम सोचते हैं कि आओ इनके पास बहुत पैसा है, देखो पता नहीं अल्लाह ने इनको इतना दिया हुआ, कितना अल्लाह इनसे खुश होगा जो इनको इतना दे दिया, और ये गरीब बेचारे इनको जरूर अल्लाह इनसे नाराज ही होगा जो इनको नहीं दिया। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अल्लाह जिससे राजी होता है उसको भी दे सकता है, जिससे नाराज होता है उसको भी दे सकता है। और आपके सामने मिसालें हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बात कहा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो दी, तो दुनिया में कभी भी नहीं किसी को मिली ना मिली थी, अल्लाह उनसे राजी था। फिरौन को अल्लाह ने ऐसा मुल्क दिया कि आगे कोई उसके चू नहीं कर सकता था, अल्लाह ताला उससे नाराज था। तो यहाँ पे सारे ये रूल खत्म हो गया, जिसका चाहे, ये अल्लाह की तकसीम है। इसका मतलब है कि किसी से भी जेलस होना, किसी से भी सोचना है इनको क्यों इतना मिल गया, इनमें क्या कमाल है ऐसा, मुझे क्यों नहीं मिला, याद रखें ये उसका ना कमाल है ना आपकी कोई कमी है, ये अल्लाह ताला की तकसीम है। और अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये तकदीर है, अल्लाह ताला ने इतना ही हमारी तकदीर में लिखा, वो हमें मिल रहा है, तकदीर पे हमारा ईमान है। जब हम कहते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बन, जब हम रदीतु बिल्लाहि रब्बन कहते हैं ना तो उसको सोचा भी तो करें, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया। तो अब आप उसके, इसका मतलब हर फैसले पे राजी होना चाहिए आपको, फिर इसमें क्यों नाराजगी है कि उसको क्यों मिल गया, उसके बच्चे के लायक क्यों निकल आए, उनकी किस्मतें इतनी अच्छी क्यों निकल आई, उनकी बच्चियों की अच्छी शादियां क्यों हो गई, हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ? नहीं, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, हम नहीं इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस कर सकते ना ऑब्जेक्शन कर सकते। तो रिस्क में सभी नेमते वैसे तो आ जाती हैं, रिस्क वो सारी नेमतों को रिस्क कहा गया जो अल्लाह ताला इनायत फरमाते किसी को। हम ज्यादातर पैसे को देखते हैं लेकिन हर नेमत रिस्क है, किसी के पास इल्म ज्यादा है, किसी को ओहदा कोई बड़ा मिल गया है, किसी को जिंदगी लंबी मिल गई, किसी के पास सेहत है, किसी के पास नहीं है, वो कहता है जी उसको क्यों मिली भी, उसकी जिंदगी इतनी लंबी, फलां तो इतनी जल्दी छोड़ के चला गया, उसको तो अभी जाना ही नहीं चाहिए था, और ये देखो अभी तक बैठे हुए 100 साल के भी होके। तो ये क्या मेरी तकसीम या आपकी है? ये तो अल्लाह ताला की है, किसको जाना है और किसको नहीं जाना ये फैसला अल्लाह का है। अब बंदा अपने लिए रिस्क की कमी को बहुत बुरा समझता है, लेकिन बाज चीजें इंसान अपने लिए बुरी समझता है उसमें उसके लिए खैर होती है, इसलिए कि रिस्क की जो कमी है, तंगी है, वो हिसाब किताब को आसान कर देगी, और जितना रिस्क ज्यादा होगा हिसाब किताब उतना ही मुश्किल होगा। हिसाब तो देना है, उसके बगैर तो इब्ने आदम के कदम हिल ही नहीं सकते जब तक ये बता ना दे माल कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ पे किया। तो बस चीजों में हम अपने लिए बुरा समझते हैं, कहते हैं हाय वो लोगों के पास तो इतना है, उनको तो सोचना भी नहीं पड़ता कहाँ खर्च करें, और उनके पास जगह नहीं है, और उनको तो ये भी नहीं पता उनके पास है कितना, देखो कितना यहाँ प्लॉट और वहां जायदादें और वहां अपार्टमेंट और वहां ये, और देखो हम पीछे रह गए और हम ऐसे हो गए, और फिर इसके ऊपर दिल तंग भी होता है, और फिर अल्लाह ताला से भी कहीं कहीं नाराजगी के जज्बात आने लगते हैं। क्यों, ये तो खैर है। अल्लाह हू अकबर, अगर इंसान समझे तो ये तो खैर है, और उनके लिए बड़ी मुश्किल है। अगर जब आखिरत ही नजरों से ओझल हो तो फिर खैर इसी में नजर आती कि यहाँ पे ही सब मिल जाए, वहां की थोड़ी हमें परवाह है, वहां आसानी से छूट जाए। इन्ना फी ज़ालिक लआयातिल लक़ौमी युमिनून, बेशक इसमें निशानियां उस कौम के लिए जो ईमान रखती हो, ईमान वालों के लिए, जिसका ईमान ही ना हो वो तो कहता जी हमने अपनी काबिलियत से कमाया और इसके पास क्यों ज्यादा, इसके तो मिलना ही नहीं चाहिए, और उसके पास क्यों कम है, उसको तो मिलना चाहिए। जब ईमान ना हो तो फिर ऐसी बातें हैं, या जब ईमान ना हो तो फिर इंसान ये कहता है जी हाँ वो इतना काबिल था, देखो उसको मिला ना, और तुमने तो कोई मेहनत नहीं की, तुम तो निकम्मे, तुम ऐसे इसलिए नहीं तुम्हारे पास है। हालांकि वो ये नहीं जानते अल्लाह ताला है, कुशादा करता है जिसका चाहता है, और कम करता है जिसका, तंग करता है जिसका वो चाहता है। इसीलिए आप दुनिया में देखते हैं कई लोग डिग्रियां ले लेके फिरते रहते हैं, कुछ भी नहीं। अगर डिग्रियों से ही मिलना होता तो जितनी ज्यादा बड़ी डिग्रियां उतनी ही ज्यादा पैसा होना चाहिए किसी के पास। कई लोगों को आप देखते हैं अंगूठा छाप है, उन्होंने सिग्नेचर भी नहीं करने आते उनको, वो अंगूठा लगाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, लेकिन इतना माल है कि उनको रेल पेल है, कोई परवाह ही नहीं है। इससे नहीं पता चलता कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है देता है। और उसके बाद वो आयत जो कुरान करीम की सबसे ज्यादा हौसला देने वाली आयत, उम्मीद अफजा आयत, इंसानियत के लिए बहुत ही तसल्ली और तशफी वाली आयत, हिम्मत दिलाने वाली आयत, हौसला बढ़ाने वाली आयत, इससे ज्यादा बढ़ के उम्मीद अफजा आयत कोई नहीं है कुरान में। ये इब्ने अब्बास का कौल है। कुल कह दीजिए, अब ये भी कुल कह के कहा गया, यानी ये ताकीदी बात है, आप कह देना, आप जाके बता देना इनको क्या, या इबादी। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट बंदों से खिताब करता है, या इबादी, ए मेरे बंदो, ए बंदो भी नहीं, या इबाद, ए बंदो, ए मेरे बंदो। जैसे माँ क्या है ना, ऐ मेरे बच्चे, आप पता ही है कि बच्चा है आपका ही है, लेकिन उसके अंदर कितनी मोहब्बत होती है। बाप कहे मेरे बेटे, उसमें कितनी मोहब्बत है, शफकत है। अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी, कौन से मेरे बंदे, सारे नहीं, अल्लदीन असरफू अला अनफुसिहिम, उन बंदों से अल्लाह ताला का खिताब है खास तौर पे यहाँ पे, जिन्होंने अपनी जानों पे ज्यादती कर दी, जुल्म कर दी। इसराफ का मतलब क्या, हद से बढ़ जाना। इंसान जब गुनाह करता है ना तो वो किसी और का नहीं नुकसान कर रहा होता, सिर्फ अपना ही कर रहा होता है, अपनी जान पे ज्यादती कर रहा होता है। इसीलिए आदम अलैहि सलाम ने फरमाया था ना, रब्बना जलमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपनी जान पे जुल्म किया, अल्लाह की नाफरमानी करके। अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बादशाह में थोड़ी कोई कमी आ जाती, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया कि उन्होंने गुनाह कर दिए, गुनाह उनसे हो गए हैं। अब देखिए ना, इस सूरत के अंदर बहुत दफा शिर्क की भी सजाएं बताई गई, कुफर की सजाएं बताई गई, और बहुत सारी चीजों का बताया गया कि ये देखो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के सामने वो कुछ आ जाए जो कि वो उस एक्सपेक्ट भी ना करता हो, बहुत सारी। अब इंसान कहता है हाय, अगर किसी को रियलाइज हो जाता है कि ये मेरे अंदर कमियां, ये गलतियां, ये चीजें मेरे अंदर हैं, अब वो क्या करे, किस क्या रोने बैठ जाए, डिप्रेशन में चला जाए, मायूस हो जाए, क्या करे अब वो? अब हो गया जो हो गया, अब पशेमानी होती है, अब अपनी जिंदगी के ऊपर पशेमानी होती है कि वो जिंदगी जो गुजार दी गफलत के अंदर, वो जिंदगी जो जहालत में गुजार दी, वो जिंदगी जो बेइल्मी के साथ, वो जिंदगी जो सारी दुनिया के पीछे लुटा दी, कहाँ कहाँ अपना वक्त गंवा दिया, अब जिंदगी हाथों से निकली जा रही है, अब रियलाइज हो रहा है कि ये सही नहीं हुआ। तो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर दिया, गलतियां हो गई हैं, ला तकना तू मेरे रहमतिल्ला, कुर्बान जाए उस रब के, वो फरमाता है तुम मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। अब मायूस होके ना बैठ जाना कि अब मेरा क्या होगा, अब क्या फायदा, दुनिया कहेगी जरूर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लो जी इनको अब याद आ गया, अब बड़ी हजन बन के बैठ गई, अब बड़ी देखो नेक बीबी बन के बैठ गई, बड़ी पारसा बन के बैठ गई, हमें पता है ये क्या चीज थी, ये क्या थी, इसके क्या कारनामे हैं, हमें पता है क्या हुआ करती थी। बहुत कुछ लोग कह देंगे, अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरी रहमत से, तुम्हारे रब की रहमत हमेशा खुली हुई है, उसके दरवाजे खुले, उनसे कभी मायूस ना होना कि रब भी यही कह देगा अब आ गए। अब जब हिम्मत जवाब देने लगी, जब दुनिया ने ठुकरा दिया, जब आंखों पे चश्मे लग गए, जब सुनाई देता नहीं है, कमर झुक गई, अब तुम्हें याद आ गया रब, सारी जिंदगी तो तुमने मुझे याद नहीं किया। वो नहीं ये कहता, फरमाता है इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीया, जब भी तुम्हें कोई कभी ख्याल आ जाए कि तुम्हारा एक रब है जो माफ करने वाला है, तो तुम उसकी तरफ पलट आना, क्योंकि वो सारे ही गुनाहों को बख्श देता है। जमीया उलमा कहते हैं ज़ुनूब ही काफी था, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब, ये वो गुनाहों को बख्श देता है, इतना कहना ही काफी था। लेकिन अल्लाह ताला ने इससे भी बढ़ के आगे फरमाए जमी आ सारे के सारे, कभी ये ना सोचना ये वाला नहीं गुना मेरा बख्शा जाएगा, अब मेरी नहीं बख्शिश होनी, अब मुझे कैसे बख्शेगा अल्लाह, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, ये ना कभी सोचना, सारे बख्श देगा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखिए आप, इसमें इतनी ज्यादा उम्मीद है, किसी किस्म का भी गुना सब बख्श सकता है वो, क्योंकि इन्नहु गफूर रहीम, बेशक वो तो है ही गफूर रहीम, गफूर में मुबालगा, ये यानी फाउल के वजन पे बहुत ज्यादा बख्शने वाला, रहीम बार बार रहम करने वाला। बस ये कि तुम एक दफा रियलाइज कर लो कि एक रब है जो बख्शता है और वो बख्श देगा, तो अल्लाह ताला बख्शने को तैयार है, कि इंसान एक दफा कह तो दे कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई। और देखिए ना, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, मैं सोचती हूँ कभी माँ बाप भी ना बच्चों से नाराज हो जाए ना, तो कहती है दूर हो जा मेरी नजरों से, आज से तू मेरी औलाद नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, ये नहीं होगा, मेरा तेरा रिश्ता खत्म आज से, जब ज्यादा नाराज हो जाए ऐसे ही होता है। यहाँ पे अल्लाह ताला उन बंदों को खिताब कर रहा है जो उसके नाफरमान है, ये नहीं कि कोई बड़े फरमा बरदार बड़े नेक, वो नहीं, यहाँ पे वो है जो इनसे गुनाह हुए में, जो गुनाहगार बंदे हैं, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या अमल कर लिए, क्या क्या किस किस किस्म के गुनाह कर लिए, हर एक के गुनाह फर्क है, तन्हाइयों के गुनाह हैं या एलानिया गुनाह किए, या बंदों के हक में किए, या अल्लाह ताला के हकूक को में कमी की, या क्या क्या किया, या कुफर कर लिया, या शिर्क कर लिया, इससे बड़ा तो गुनाह नहीं हो सकता, इतने बड़े बड़े भी गुनाह किए, तब भी अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी मेरे बंदो, अल्लाह हु अकबर, के वो माँ भी नहीं कहती कि मेरे बेटे, तू फिर भी मेरा ही बेटा है, अल्लाह ताला फरमाता है तू फिर भी मेरा ही बंदा है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान जो रिश्ता है ना, उस चीज को अल्लाह ताला ने यहाँ पे मेंशन किया। ये भी हो सकता है कुल लिल्लदीना असरफू अला, कह दीजिए उन लोगों से, ये भी हो सकता था या इबादी अंदर लाना कितनी इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी शफकत इंसान के ऊपर जो है उसको महसूस करें कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूटा नहीं है, तुम्हारे गुनाह करने की वजह से ऐसा नहीं है कि दफा हो जाओ तुम मेरे बंदे ही नहीं है, जाओ जहां मर्जी जाओ अब इन्हीं गुनाहों के अंदर रहो। अगर अल्लाह ताला ऐसे कह देता तो हम क्या करते, कोई फिर ठिकाना ना होता, लेकिन वो फिर भी बुलाता, वो फिर भी बंदे को आवाज देता, क्या ही बात है ऐ मेरे बंदू, बंदे बख्शीश मांगने में देर करते हैं, अल्लाह ताला बुला रहा है, कुरान में पुकार रहा है अपने इन बंदों को रियलाइज नहीं होता, वो डिले करते हो, कहते कब कर लूंगा तो अभी कौन सी जल्दी है, वो कहते हाँ बुढ़ापे में कर लूंगा, जबकि रब जो माफ करने वाला है, जिसको कोई नुकसान नहीं हमारे गुनाहों का, वो बुला रहा है, बख्शने वाला तैयार है बख्शने के लिए, और जिसको बख्शिश चाहिए वो बदबख्त ऐसा है कि उसको एहसास ही ना हो। तो ये अल्लाह और बंदे का रिश्ता, आबद और माबूद का रिश्ता, वो उसके जरिए अल्लाह ताला ने इंसान को पुकारा है, जितने भी गुनाह कर लो तुम वो मेरे ही बंदे। कभी हम में तुम में भी चाहती, तुम्हें याद हो के ना याद हो, कभी हम भी तुम भी ते आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। अल्लाह अकबर, वो रास्ते ही भूल गए जो अल्लाह की तरफ जाते थे, वो रब ही भूल गया जिसने पैदा किया, इसने खिलाया पिलाया पाला पोसा इतना बड़ा किया, ये ताकतें ये हिम्मतें ये देखना सुनना बोलना सांस लेना सब में उसकी मोहताजी, उसी को भूल गए। ऐसे नहीं आपको लगता जैसे बच्चा रूठ के चला जाता है ना, नाराज होके घर से निकल जाता है, तो वो बच्चे को तो पता नहीं कभी एहसास हो ना हो, लेकिन माँ बाप जरूर दरवाजे को तकते रहते हैं ये कब इससे हमारा बच्चा वापिस आ जाए। अल्लाह ताला इतना करीम है, इतना रहीम है, ये बंदा नाफरमानियां करके अल्लाह से दूर चला गया, लेकिन अल्लाह ताला पुकार रहा है तुम आ जाओ मेरे दरवाजे खुले में, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, तुम मेरा दर छोड़ के चले गए, मैंने अपना दरवाजा नहीं बंद किया, मेरे दरवाजे खुले हैं, इसीलिए फरमाया ना ला तकना तू मेरे रहमतिल्ला, मायूस ना हो ना दरवाजा खुला हुआ है, वही है जो इंतजार कर रहा है कि बंदा कब तौबा करे, हालांकि उसका कुछ जाता नहीं, बंदे तेरी बदनसीबी है कि फिर तू तौबा की तरफ ना आए, फिर तू अपने रब की तरफ ना पलटे, इतने करीब रब को छोड़ के किधर धक्के खाता है, कोई दुनिया इंसान को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकती, वो नहीं दे सकती वो मोहब्बत वो शफकत वो मेहरबानियां वो रहमतें नहीं निचावर कर सकती जो रब की है, दुनिया से मोहब्बत करके देख लो वो कुछ नहीं देगी, ये बेवफा है, हर रब से मोहब्बत करके देखो कि वो क्या देता है, लेकिन इंसान हमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, इंसान अल्लाह ताला की कदर नहीं करता जैसे उसको कदर करनी चाहिए, तो कभी तो कोई रिश्ता था ना, भूल गए सब भूल गए, दुनिया में आए इसमें ही लग गए, इतने मगन हो गए कि तुम्हें याद ही ना रहा कि तुम्हारा एक रब भी है, तुम्हें याद ही ना रहा, वो ही ना रहा, याद रहा जो रोटी खिलाता है जो पिलाता है जो हजम कराता है जो तुम्हें चला रहा है, उससे इतनी गिले शिकवे इतनी दूरी, किसी ने मुझे पिछले दिनों ही कहा, मुझे इतने दुख भी हुआ, जब इंसान अल्लाह को ना पहचाने तो फिर यही होता है, उसने कहा मेरे पास बहुत क्वेश्चन है बहुत ऐसी बातें हैं मैंने तो जो समझ नहीं आती ना, मुझे कुछ जवाब ही नहीं दे सकता, बहुत उसको गिले शिकवे शिकायतें ऑब्जेक्शंस बाकायदा, ये नहीं कि अपने हालात पे, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों हुक्म है, वो क्यों ऐसा है। अल्लाह अकबर, काश इंसान अपने रब को पहचान जाए ना, तो उसकी बोलती बंद हो जाए और उसकी मोहब्बतों का अंदाजा कर लेना, तो इस इंसान का ना रुआ रुआ जो है वो पुकार उठे कि अल्लाह तेरा जैसा कोई नहीं है। का जोड़ जोड़ अलग हो जाए अगर वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को पहचान जाए कि वो मेरे रब इतना मोहब्बत करने वाला है, अलवदूद, इतना मोहब्बत करने वाला, ये उसकी मोहब्बत है ना कि वो बुला रहा है। वरना जाओ जहां मर्जी रुलते फिरो, उसको क्या परवाह, उसकी बादशाहत में क्या कमी है, उसको क्या फर्क पड़ता है। तुमने अपने आप को गुनाहों में डालना डालते रहो, तुम्हें सब कुछ बता दिया, नहीं सुनते ना सुनो। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जो कातिल भी है, जानी भी है, मुजरिम भी है, जिसने क्या क्या नहीं गुनाह कर लिए, वो भी सारे इसमें, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, वो सब है इसके अंदर। वो जिसको दुनिया भी लानते भेजे और दुत्कारे, वो भी अगर रियलाइज कर ले, और रियलाइज करने के लिए कोई सी किसी, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया जाओ काबा जाओगे तो वहां पे अगर माफी मांगोगे तो फिर होगी। हम कहे हमारे पास तो टिकट ही नहीं आए, हमारे पास तो जाने के बस आए ही नहीं, वो कहता है बस तुम जिधर हो वहीं पे तुम पशेमानी इतनी आ जाए कि बस मेरे अल्लाह मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तू मुझे माफ कर दे। इतना सा भी, यानी हदीस में आता है कि इतना सा भी कि जितना मक्खी का सार है, इतना सा भी आंसू आंख में आ गया ना कि जो बस आंख के किनारे को इतना सा तुम्हें रियलाइज हो गया, अल्लाह ताला उसी वक्त ही माफ कर देता, उसी वक्त ही माफ कर देता है। कि यानी ये भी नहीं है कि तुम्हें ये करना है उस और ये करना है और फिर ये और ये वाला, नहीं मैं गुनाह माफ करूंगा ये वाला कर दूंगा ना, अज़्ज़ुनूबा जमीया, सारे के सारे गुनाह माफ कर दूंगा, बस तुम्हें एक दफा निदामत तो हो जाए, एक दफा तुम ये सोच लो कि मैंने पलटना है, एक दफा तुम्हें ये पता हो कि मेरा एक रब है जो माफ करने वाला है। ना किसी पादरी के पास, ना इमाम के पास, वो तो कहते चर्च में जाओ और तुम कन्फेशन करोगे तो फिर, यानी इंसान अपना सारा कच्चा छट्टा जाके किसी को बताए, उसके सामने भी जलील हो और उसके बाद फिर उसको कहीं वो कन्फेशन के वो देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं फरमाया, तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, दिल ही दिल में अल्लाह से बात करते हो और अल्लाह ताला से तौबा करते हो, बख्शिश मांगते हो, मुझे माफ कर दे, किसी जुबान में भी। कोई तुम्हें जरूरी नहीं कि आपको कोई कुरानी दुआएं, मसनून दुआएं ही आती हो तो आपने उसमें मांग, हाँ पशेमानी जरूर हो, निदामत जरूर हो, हाँ ये पछतावा जरूर हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो गया मुझसे, हाँ ये जरूर एहसास दिल में हो कि अब मुझे मौका मिले तो अब नहीं कभी करूंगी, ये है तौबा, ये है बख्शिश मांगना, तो अल्लाह ताला माफ कर देता और उसको कोई परवाह नहीं है ना, उससे किसी ने पूछना है अल्लाह तूने क्यों इसको माफ किया, ना उसने ये देखना है कि बूढ़ा होके आया कि जवानी में आया, ना उसने देखना है कि ये इसके गुनाह कितने थे, लाख थे कि 10 लाख थे, करोड़ थे या उससे भी ज्यादा थे, आसमानों की बुलंदियों को छू गए या उससे कम थे, ना उसने तोलने हैं, उसने सारी गुनाहों को डिलीट खत्म, इतना मेहरबान रब कहीं बताओ कि कोई हो सकता, अरहमुर राहिमीन, वाकई वो है। लोग गुन गाते हैं इंसानों के और कहते हैं अल्लाह ने ये क्यों कर दिया, उसके ऊपर ये क्यों जुल्म हो गया, अल्लाह ताला ने उसको क्यों नहीं रोका, अल्लाह ताला ने ऐसे, तुम जाने ही नहीं कि अल्लाह कौन है इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो, तुम्हें पता ही नहीं, वरना कभी कोई गिला शिकवा जुबान पे ना आए। तो ये है वो रब के इन्नहू अल गफूर रहीम, इवन अगर शिर्क भी कर चुके हो तो अभी भी वक्त है माफी मांग लो, अभी भी वक्त है पलट आओ, अभी भी वक्त है तौबा कर लो। शैतान ने कहा था ना, ए अल्लाह मैं इनको बहकाता रहूंगा, मैं बहकाता रहूंगा, जब अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी, मैं इनको आखिरी सांस तक बहकाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं भी इब्ने आदम को बख्शता रहूंगा बख्शता रहूंगा, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगता रहेगा, उसकी आखिरी सांस तक, जब तक बख्शिश मांगता रहेगा मैं भी उसको बख्शता रहूंगा। ये तो अल्लाह ताला ने वादा दे दिया। इवन आप देखें, यानी इतनी बड़ी बात है कि असहाबुल उखदूद जो थे, जिन्होंने उस वक्त के ईमान वालों को आग में डाला था, उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बुरूज में, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाती सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, कि जो फिर तौबा ना करे उनके लिए है। तौबा अगर कर ले वो तो अल्लाह उनको भी माफ करने को तैयार। ईसाई लोग जो शिर्क करते हैं, जो तसलीस का अकीदा रखते हैं, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं, उनको भी अल्लाह तआला ने फरमाया अफला यतूबूना इलल्लाह व यस्तगफिरूना, क्या तुम तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ नहीं आते? यानी अगर तुम भी तौबा कर लो अल्लाह तआला माफ कर देगा। इससे क्या बड़ी बात हो सकती है कि शिर्क जैसे गुनाह को भी अल्लाह तआला माफ करते। वो जिसने 99 लोगों का कत्ल किया, लोग कहते हैं कि हकूकुल इबाद, वो नहीं अल्लाह माफ करेगा, बाकी सब माफ कर देगा। बाकी यानी अल्लाह के हक में जितनी मर्जी कमियां कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में वो छुट्टी ले लेते। अल्लाह के हक में कमियां कर लो, लोगों के हक में ना, ठीक है, लोगों के हकूक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और अल्लाह ताला इससे बड़ा खुश होता है जब इंसान इंसानों के साथ भलाई करता है। लेकिन 99 का कातिल, उसको भी तो अल्लाह ने माफ किया ना, उसने अल्लाह की जनाब में तो नहीं कुछ किया था। इंसानों के हकूक, इससे ज्यादा बड़ा हक क्या मारना कि उसकी जान ही ले ली, अल्लाह ने माफ किया ना। अब अल्लाह ताला उनको कैसे कॉम्पेंसेट करता है वो अल्लाह ताला का काम है। लेकिन कभी ये ना सोचे ये तो बस माफ ही नहीं होना, नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देगा अगर तुम माफी मांगोगे। हाँ, अगर वो लोग जिंदा है तो आप जाके उनसे माफी भी मांग ले, ताकि यहीं पे सारा कच्चा चट्टा सारा साफ हो जाए, हिसाब साफ हो जाए। हदीस में आता है एक बूढ़ा शख्स जो था ना, लकड़ी टेकता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, उसने कहा कि मेरे छोटे मोटे गुनाह बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मैंने ऐसे गुनाह किए हैं और इतने सरकशियां और इतनी नाफरमानियां की हैं, क्या मेरे लिए कोई बख्शिश है, मुझे बख्श दिया जाएगा? यानी अब वो बूढ़ा हो चुके, अब सोचेंगे कितने गुनाह होंगे, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अब बुढ़ापे में आके कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अल्लाह की तौहीद की गवाही नहीं देता? उसने कहा हाँ। रिसालत की गवाही देता? उसने कहा हाँ। अल्लाह ताला तेरे गुनाह माफ कर देगा, फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बशारत दी। तो बंदा क्यों मायूस होता है? वो मायूस असल में हम तब होते हैं जब हम ना अल्लाह ताला को अपने जैसे इंसानों की तरह समझने लगते हैं, कि जब इंसान नहीं माफ करते तो इंसानों का तो हाल ये है ना कि अगर वो माफ कर भी दे तो दिल में जरूर रखते हैं, कहते हैं क्या करें, बस बात तो आ ही जाती ना, भूलती तो नहीं है ना, लेकिन अल्लाह ताला भुला देता। अल्लाह हू अकबर। मगर ये बंदे को भी नहीं चाहिए कि इस उम्मीद पे फिर गुनाह करता रहे कि माफी तो मिल ही जानी है, वो तो माफ कर ही देता है। नहीं, फिर ये ना करें, ये दलेरी है गुनाहों के ऊपर, बजाय इसके कि इंसान फिर और ज्यादा अल्लाह ताला के करीब आ जाए कि अल्लाह तू इतनी मोहब्बत करने वाला, ए अल्लाह तू इतना मेहरबान। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि इंसान इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की तरफ आए कि अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन गुनाहों पे दलेर ना हो। तो अल्लाह ताला ने एक मायूस इंसान को भी मायूसी से निकाला। बाज़ लोग मायूस होके फिर क्या करने लगते हैं, शराबें पीने लगते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि गुनाहों की भी अपनी नहुसत होती है ना, और गुनाहों की वजह से इंसान को कहीं चैन नहीं आता, और शैतान भी हर वक्त उसको ये कह कह के, बाज लोग खुदकुशी कर लेते हैं कि ये हमसे हो गया, अब हमारी कोई माफी नहीं, वो अपने आप को खुद ही नहीं माफ कर पाते। तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है और अल्लाह ताला को माफी पसंद है, इसलिए वो माफ करता है।
और अल्लाह ताला ने यहाँ पे या इबादी कह के बंदे को जो अपना और अल्लाह का रिश्ता है ना वो याद दिलाया, और हमें याद दिलाया कि इस रिश्ते को कभी ना भूलना। भूल भी गए थे तो अब लौट आओ, अब एक नई जिंदगी का आगाज कर लो। अब इंसान देखे दोबारा से स्टार्ट ले सकता है इसके बाद। इंसान के अंदर से वो गिल्ट जो उसको हर वक्त तंग करती है वो अल्लाह ताला खत्म कर देता है कि कोई बात नहीं तुम आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह करते 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 जमीन और आसमान भर दो, हालांकि कोई इतने नहीं कर सकता, लेकिन इतने करो कि जमीन और आसमान भर दो, फिर अल्लाह ताला से इस्तिग़फार करो तो बेशक वो तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह अकबर। और ये सिर्फ इस्तिग़फार की तस्बीह नहीं, क्या निदामत, शर्मिंदगी, ये शर्मिंदगी जरूर होनी चाहिए। और अपने गुनाहों को कभी हल्का ना समझे। मुनाफिक है जो अपने गुनाहों को हल्का समझता है, ऐसे जैसे नाक पे बैठी हुई मक्खी। मोमिन जो है वो छोटे छोटे गुनाहों को भी इतना समझता है कि जैसे पहाड़ के नीचे बैठा हो, तो पहाड़ मेरे ऊपर गिर आएगा। और कभी भी ये भी ना सोचे, ये भी शैतान के वसवसे होते हैं, अब मुझसे कौन सा तौबा पे कायम रहा जाएगा, इसलिए मैं अभी करती ही नहीं हूं तौबा, एंड में करूंगी, ताकि सारे गुनाह कर लूं फिर करूंगी। नहीं, आज ही करें, अभी करें। हमें क्या पता कि हमें मोहलत मिलेगी कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है ना, जिसको यकीन हो गया कि उसका एक रब है और वो गुनाह माफ करता है, तो मैं उसको, मुझे परवाह नहीं, फिर मैं उसको गुनाह माफ कर दूं। तो इतराफे गुनाह बड़ी चीज है। देखिए आप, ये क्या ना, हमने कौन सा इतने गुनाह किए हैं कि अब हम माफिया ही मांगते जाएं, हमने कौन सा ऐसा कुछ कर दिया, ये तो फिर इसका मतलब फिर माफी क्या इंसान मांगे। मैं तो सोचती हूँ माफी की, तौबा करने की तौफीक भी मिल जाना ना, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत होती। वो बाज लोग गुनाह करते रहते तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती, और वो इसी तरह कहते रहते हैं ना कर लेंगे ना कर लेंगे, आज नहीं करना हमने, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, जब ये काम हो जाएगा तब करेंगे, एक ही दफा तौबा करेंगे, बार बार तो नहीं ना करनी, और मेरी कौन सी तौबा कबूल होनी। और देखिए ये सबसे ज्यादा कुरान की खुशी देने वाली आयत है, सबसे ज्यादा। हाँ, तो इतराफ़े जुर्म भी इंसान करे, गुनाहों का इतराफ भी करे, और गुनाहों पे अड़े भी नहीं, वरना फिर शर्मिंदगी इस बात की अगर अड़ ही जाना है उसके ऊपर, अगर वो ही करते रहना और यही सोचते रहना मैंने कत्ते तो जाना है, मैं अभी बस माफी मांग लेती हूँ, ये नहीं। तो बहुत प्यारी आयत है। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि किस तरह आप इस तौबा पे कायम कैसे रह सकते हैं। अब तौबा कर ली है ना, तो अब कैसे कायम रह सकते हैं। देखो ये ना हो कि हमारी तौबा टूट जाए, तो इसकी हिफाजत के लिए भी तो कुछ चाहिए ना कि बस मेरी तौबा कायम रहे। अनीबू इला रब्बिकुम, और रुजू करो अपने रब की तरफ। यानी मैंने आपको बताया इनाबत क्या होती है, इनाबत है बार बार पलटना, बार बार पलटना, बार बार लौटना अपने रब की तरफ, लौटो बार बार, बार बार पलटो वो असली मूलहू, और इस मती हो जाओ। इस्लाम ले आओ का मतलब क्या, सबमिशन होती है इस्लाम, यानी सबमिट कर दो अपने आप को अल्लाह ताला के आगे, बगावत ना करो, अकड़ो नहीं। तो पिछली जो बात है अब इसी की कंटिन्यूएशन है आगे। पिछली आयत जो है ना कि जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है वो नंबर वन क्या करें, ला तकना तो मेरा रहमतेगा, नंबर टू क्या करें वो, वह अनीबू इला रब्बी, समझ आई। तो वो अपने रब की तरफ इनाबत करें, रुजू करें, झुके, और इनाबत समझ लें कि अंदर की कैफियत है और इस्लाम बाहर की कैफियत है। सबमिशन बाहर की, अनीबू अंदर। इनाबत के बारे में बहुत सारे अकवाल उलमा ने बताए हैं, वो जैसे इखलास के साथ अल्लाह की तरफ पलटना, तौबा और इखलास के साथ अल्लाह की तरफ पलटना, इसी तरह गफलत से निकल आना, अब गफलतें मैंने छोड़ देनी है, अब नहीं अल्लाह से दूर रहना, फिर नेकियों की तरफ लपकना, गुनाहों को छोड़ देना। ये मैं आपको डिफरेंट अकवाल को समराइज करके बता रही हूं ताकि आपको पता चले अनीबू में क्या क्या आता है। दिल में अल्लाह की अजमत का एहसास हो जाना, ठीक है, दिल में ये होना कि अल्लाह ताला इतना तू अजीम है, तू इतना बड़ा है, मैं कैसे तेरी नाफरमानी कर सकती हूँ। इताअत पे जम जाना, और इसी तरह अल्लाह ताला के मकाम को पहचानना, उसके जलाल के आगे आजी करना, अल्लाह ताला से दोस्ती कर लेना। नाराज होके चले गए थे ना, जब गुनाह किए तो दूर चले गए, अब वापस पलट आना, अल्लाह ताला से वापस दोस्ती कर देना, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ देना और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलना। तो जब इंसान अनीबू इला रब्बिकुम करेगा ना, जिन जो गुनाहगार है उनको ये कहा जा रहा है कि इनाबत करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, और असलिमु करेगा जवारे के साथ, अपने आजा के साथ भी, बस फरमाबरदारी में लग जाओ, नेकियों के कामों में मना। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम वला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उन्होंने एक बात ही नहीं अगली की, उन्होंने कहा मैं अपने रब के आगे झुकता हूँ, मुती होता हूँ, फरमाबरदार होता हूँ। अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, वो तो पहले ही फरमा बरदारों में से थे। वो हमें हमें तो कितनी जरूरत है कि हम अल्लाह के आगे झुके, इस्लाम अपने आप को मुकम्मल सुपुर्द कर देने वाले की माना देता है, मुकम्मल सुपुर्दगी, सबमिशन, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना। तो यानी इंसान अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दे। किसी शख्स ने पूछा था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया तुम अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द कर दो और अपने चेहरे का रुख उसकी तरफ कर लो, ये बस अल्लाह ही है मेरा। तो ये अल्लाह की फरमाबरदारी है ना। अब देखे ना, इंसान जब गुनाह करता है तो दो ही उसके लिए रास्ते हैं, या तो वो इनाबत करे और तस्लीम, और या फिर वो गुनाहों पे अड़ जाए। तो गुनाह पे अड़ना नहीं है, फौरन अल्लाह ताला से तौबा करनी है और रुजू करना है, और मैंने आपको सारी रुजू की बात बता दी। अब आप इनाबत को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं ना, मैं इस एक अच्छी छोटी सी मिसाल से आपको बताती हूँ। इनाबत जैसे हम फोन की इनाबत करते हैं, हम अपने फोन की तरफ इनाबत करते हैं, कैसे बार बार इसकी तरफ रुजू करते हैं ना, देखा ना आपने, मिनट होता नहीं है तो हम टिक हुई तो हमने फौरन फोन उठा लिया, किसने मैसेज किया, या बार बार आके देखते हैं कोई बात तो नहीं, किसी ने कोई मैसेज तो नहीं कर दिया, ये इनाबत है। इस तरह अब आप अब तो समझ आ गई होगी ना इनाबत क्या है। इस तरह अपने रब की तरफ करो जैसे फोन की तरफ करते हो। बात तो बुरी है, ऐसी तो रही है, अल्लाह ताला की तरफ तो और ज्यादा इनाबत होनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे, और झुक जाओ उसके आगे। मिन कबली अयातिकुमुल, इससे पहले कि अजाब आ जाए, क्योंकि गुनाह करेंगे तो अजाब ही आएगा ना, कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। तो अजाब आने से पहले माफी भी मांग लो, इनाबत भी करो, झुक भी जाओ। जब तुम ऐसे करोगे तो अल्लाह का अजाब टल जाएगा। तुम मला तुम सरून, फिर ये ना हो कि अगर अजाब आ जाए ना, फिर तो कोई मदद नहीं दिया जा सकता। अब इससे हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं कि अब तौबा तो कर लिया, अब उसके बाद जो मर्जी करो, अब तो उस पिछला साफ हो गया, अब तो हमारी यानी अब और ज्यादा रिलैक्स हो गए, अब जो मर्जी गुनाह करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अनीबू इला रब्बिकुम वासलिमू लहू, और फिर भी डरते रहो अल्लाह के अजाबों से, अल्लाह का अजाब ना आ जाए। और ये भी के यहां से हमें पता चलता है मिन कबली अय्यातिकुमुल अज़ाब, यानी इससे पहले के अजाब आ जाए तो ये सब काम कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इंसान डिले ना करे, कि तौबा को डिले करता रहे, वो कर लेंगे अभी क्या वक्त है,
अभी बच्चों की शादी हो जाए फिर तौबा एक ही दफा कर लेंगे, हराम खाने से तौबा उस वक्त कर लेंगे, हिजाब करना बेपर्दगी से तौबा उस वक्त कर लेंगे, फलां चीज से तौबा उस वक्त कर लेंगे, अभी सारा कुछ कर लो, तौबा के लिए हमने एक टाइम रखा, नहीं तौबा कर लो और अल्लाह ताला की तरफ पलट के आ जाओ और उसके फरमा बरदार बन जाओ इससे पहले कि अजाब आ जाए, वे पता भी नहीं चलेगा फिर। वत्तबिउ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और नंबर टू क्या करो या नंबर थ्री क्या दें आप, पहली तौबा कह दें उसके बाद इनाबत कह दें फिर उसके बाद इस्लाम कह दें, इनाबत और इस्लाम यहाँ एक ही कर लें, और उसके बाद वत्तबिउ, ये स्टेप्स है ना, इत्तेबा करो फॉलो करो, क्या आसन मा उन्ज़िला इलैकुम, आसन की बेहतरीन की जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और बेहतरीन चीज क्या नाजिल की गई तुम्हारे रब की तरफ से, वो ये कुरान है, कुरान और हदीस, क्योंकि हदीस भी अल्लाह ही की तरफ से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो अल्लाह ही की तरफ से पैगाम था, उससे बाहर नहीं कुछ फरमाया, तो ये आसन कलाम है, ये आसन चीज है, इसलिए इसकी इत्तेबा करो, यानी कुरान करीम को फॉलो करो, इसके अहकामात को फॉलो करो, हमने क्या फॉलो करना अगर हमें कुछ समझ ही नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं कुरान में है क्या, कुरान कहता क्या है, हदीस में है क्या, ये बातें अगर दिल को तंग करने लगती हैं तो फिर हम क्या फॉलो करेंगे, अगर या इनकी बजाय और चीजें अच्छी लगती हैं इस तरफ आते ही नहीं है तो फॉलो किसको करेंगे, कुरान को आसन कहा गया, इसीलिए तो है ना, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, और अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि उसने ये कलाम नाजिल किया, आप में फरमाते थे ना नमाज में हमने तशहुद के बाद आसनुल कलाम कलाम कलामी के कलामुल्लाह व आसनुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, तो कुरान और हदीस, कुरान और सुन्ना या जिसको कह सकते उसको थामे ताकि गुमराही से बचे, तो ये इसकी पैरवी करना भी इंसान को सीधा रखेगा, अब तौबा करके फिर फ्री हैंड नहीं, अपनी इस्लाह के रास्ते पे चल चुके हो, अब जब कह दिया ना कि मेरे से गलती हो गई अल्लाह मैंने नहीं अब ये करना, अब रास्ता यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया, जिधर जा रहे थे गलत रास्ते पे चले हुए थे, यू टर्न लेके वापस अल्लाह की तरफ पलट आए, तो अब किस रास्ते पे चलना, अब इस्लाह के रास्ते पे चलना, इस्लाह कैसे होगी कि रुजू करें अल्लाह की तरफ, फरमा बरदार होंगे, सबमिट कर दें उसके सामने, और इस कुरान की पैरवी करें, फिर भी अगर कोई पूछे कि कुरान पढ़ना फर्ज है कि नहीं, कुरान पाक को समझना वो क्या जरूरी है कि नहीं, आप बताएं, आसन कलाम यही है, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज ये है, फिर भी इंसान, जब पैसे हमने पहले भी तो पढ़ा है आसन उल हदीस, इसका पिछले सबक में ही पढ़ा, ये आसन उल हदीस है, उसको छोड़ के इंसान सोचे कि और चीजें हैं जो मेरे लिए आसन है, जबकि अल्लाह ताला ने इसको आसन फरमाया, जाहिर है अल्लाह का कलाम है ये, जो कुछ भी इसके अलावा है वो इंसानों की बातें हैं ना, फिर भी अगर अहमियत नहीं देंगे तो फिर हमने इसकी कदर नहीं पहचानी, मिन कबली अन यातियकुमुल अज़ाबु बगततम व अंतुम ला तशऊरून, इससे पहले के अजाब आ जाए, देखिए पहले क्या आया, इससे पहले के अजाब आ जाए फिर तुम्हें कोई मदद नहीं देगा, अब आया इसकी तरफ आ जाओ इसको फॉलो करो, ये नहीं अच्छा ये हुक्म आ गया कर लेंगे, ये कौन सा अभी इतना जरूरी है, कर लेंगे जब ये हो जाएगा, कर लेंगे जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, कर लेंगे जब ये, हमने हर एक चीज को लिए टालने के लिए ना एक वक्त रखा होता है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर कर लेंगे, या वैसा हो जाएगा फिर कर लेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है इससे पहले कि अजाब आ जाए अचानक, हो सकता है कि हमने सोचा हो कि हम उस वक्त करेंगे जब ये काम हो जाए, और उससे पहले ही कोई अजाब आ जाए, और अजाब ये इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, कलेक्टिवली भी आ सकते हैं, कौमों पे भी आते हैं जब कौमें गुनाह करती हैं, जैसे आपसे सल्लम ने फरमाया ना, अब इस हदीस से आपको पता चल जाएगा, ये जो पीछे भी हमने सारी बातें की, जब जमीन में बुराई आम हो जाती है तो अल्लाह ताला अहले जमीन पर अपना अजाब नाजिल फरमा देता है, अगर इसमें नेक लोग होते तो वो भी इसमें मुब्तला हो जाते जिसमें दूसरे लोग होंगे, फिर अल्लाह की रहमत की तरफ वो लौट जाएंगे, यानी नेक लोगों को फिर अल्लाह ताला
उठा लेगा तो अपनी रहमत में दाखिल कर देगा, लेकिन अजाब सबके ऊपर ही आएगा। उसमें ये नहीं होगा कि चुन चुन के बुरे लोगों पे आ रहा है और नेक लोग जो है ना वो आराम से अपने घरों में बैठे, ऐसे नहीं, पूरे फिर पूरी पूरी बस्तियों पे ही आता है ऐसा। तो जो बुराई है, जैसे हमने पहले पढ़ा, असाबहुम सैयातु मा कसबू, पहुंची उनको जो बुराई उन्होंने कमाया था उसकी, तो वाकई जो अपनी कमाई है इसका वबाल आता है। कि आपसे सब ने फरमाया ना, जब जमीन में बुराई आम हो जाए, आम हो जाए, तो फिर सबके ऊपर ही आता है अजाब। तो आओ फॉलो करो इसको, इससे पहले कि अजाब आ जाए अचानक, पान तुम ला तशरून। और ये जो अचानक वाला होता है ना, ये बहुत तकलीफ दे ज्यादा होता है। एक होता है एक्सपेक्टेड है, ये ऐसे हो रहा है, एक अचानक इंसान की जो पकड़ हो जाए, अचानक इंसान के ऊपर जो ऐसे आए ना, एक सडन, एक वो कोई शॉक ड्रग जाए कि ये हो क्या गया मेरे साथ, वो बहुत तकलीफ दे होता है। और वो कभी कभी इंसान के लिए सहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंसान को नाफरमानी करते हुए लाखों दफा सोचना चाहिए कि क्या मैं इसकी सजा भुगत सकता हूं, पहले ये सोच लें। अगर भुगत सकते हैं तो 100 दफा कर लें, फिर जाए सोचे उन सजाओं को भुगत सकते हैं क्या। ये जो कुरान बताता है सजाएं, इनको बर्दाश्त करने की हमारे अंदर ताकत है? जो एक गर्मी ना बर्दाश्त करें जरा सी भी, पहले इसको जरा टेस्ट करके देख ले। हाँ, करने से पहले अपनी उंगली आग के ऊपर रख के देख लें तो ये आग तो कुछ भी नहीं, वो ये आग तो, ये बेचारी आग तो उससे पनाह मांगती है, जहन्नुम की आग से। ये तो ठंडी करके दुनिया में भेजी गई, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लिहाजा गुनाहों पे दलेर ना हो, बहुत बहादुर ना बने कि मैं तो ये कर सकती हूँ और कोई मुझे नहीं फर्क पड़ता और मुझे किसी की परवाह नहीं। या अन तकूला, अब तीन बातें कही गई ना यहाँ पे, अन तकूला के कहे कोई नफ्स, ये ना हो कि ऐसा हो जाए, यानी ये बताया गया, ये ना हो कि कोई ऐसा हो जाए कि अचानक तुम्हारे पर अजाब आ जाए, अचानक पकड़ हो जाए और उसका तुम्हें पता ना चले, और ये ना हो अन तकूला के तुम में से कोई कहे, क्या कहे कोई नफ्स, क्या कहे, या हसरत, हाय हसरत। हसरत किस चीज पे होती है? जो चीज हाथ से निकल जाए, उसका जो गम होता है इंसान को। अलामा फरतु मिन जंबिल्ला, जो मेरे से कमी हो गई अल्लाह की हक में, अल्लाह ताला के हक में जो मैंने कमी कर दी। हाय, इंसान ये हसरत करना शुरू कर दे, इस पे पछताए, इसके ऊपर उसको गम लग जाए। अब देखिए दुनिया के अंदर जो हसरतें होती हैं वो किस तरह की होती हैं। हसरतें, हमारी हसरतें, हमारी हसरत तो ये तो कभी होती नहीं कि हाय हाय काश मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी नेकियां की होती, ऐसी हसरतें नहीं होती। ये जरूर हसरतें नहीं, हाय काश हम वहां पे इन्वेस्ट कर देते, आज देखो कितनी वो जमीन महंगी हो गई है, काश हम उस वक्त ले लेते ना, लोगों ने लेके देखो कितना प्रॉफिट बना लिया। उसकी तरह इतनी हसरत होती, सारी जिंदगी हसरत कहते रहते हैं। ये तो हमारे करीब थी, जब हम यहाँ पे रहते थे तो इतनी सस्ती थी, ओ काश हम वहां पे इन्वेस्ट कर देते, देखो आज उसके शेयर्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए, फलाने मुझे कहा भी था, कितनी हसरत होती है। काश मैं भी वहां चली जाती, मुझे भी ये जॉब मिल जाती, आई मैं वहां पे पहुंच ही नहीं सकी, मैं जा ही नहीं सकी। काश हम पहले रिश्ता डाल देते, वो हमारे बच्चे का रिश्ता हो जाता, देखो कितना अच्छा था। हम हसरतें इस तरह की है हमारी, हालांकि ये तो हसरत की कोई बात ही नहीं। असल हसरतें वो होंगी जो इंसान फिर मौत के वक्त करेगा या कयामत के दिन करेगा, जिन रिग्रेट्स का अब कुछ नहीं हो सकता और इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। पहली तो ये हसरत, अल्लाह ताला फरमाते ये ना हो कि फिर तुम मान जाओ, तुम इत्तेबा करो इसका जो अहसन है जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी इस कुरान का और हदीस का इत्तेबा करो, इससे पहले कि तुम कहो हसरतें करो कि हाय काश। ये पीछे से सारी कनेक्टेड है बात, समझ आ रही है आपको बात? कनेक्ट मैं आपको करके बता रही हूँ कि किस बात पे हसरत की बात आई, कि ये ना हो कि तुम नहीं अमल करो और उसके बाद फिर कहो ये ना हो तो इनाबत नहीं करो, तुम सबमिट ना करो, तौबा ना करो, ये सारी बातें जो पीछे आई उसके बाद फिर तुम हसरतें करने लगो, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने अल्लाह ताला के हक में कमी कर दी। और अल्लाह के हक में कमी क्या है? जब इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता तो उसने हक में कमी की। जब इंसान इस कुरान पे अमल नहीं करता तो उसने अल्लाह के हक में कमी की। जब इंसान वो जो अजर व सवाब की अल्लाह ताला ने मौके दिए हैं उनके उनको करके वो अजर नहीं कमाता तो उसने अल्लाह के हक में कमी की। तो ये कमी है, जब इंसान के पास मौका है कि अल्लाह का कुर्ब पा ले और वो परवाह ही नहीं करता, इस इसकी कोई फिक्र ही नहीं, इस तरफ तवज्जो ही नहीं, तो कमी की ना, वो फिर अब पछताएगा कि हाय मेरे पास चांस भी था, मैंने क्यों कमी कर दी अल्लाह के हक में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हक क्या है कि उसकी इबादत की जाए और उसकी इताअत की जाए, उसकी बात मानी जाए, फिर भी इंसान इस चीज को इग्नोर कर दे और अल्लाह की माने ही ना, तो फिर बहुत पछतावा होगा। और वाकई हम सबसे ज्यादा कमी जो है ना अल्लाह के हक में करते हैं, अगर देखें लोगों, फिर भी लोग हमसे पीछे पड़ पड़ के अपने हकूक दिल निकलवा ही लेते हैं जिसका जोर चलता है, लेकिन अल्लाह के हक में कमी करना है। जैसा ना घर के काम होंगे या कहीं जाना होगा, नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी भी पढ़ ली, अगर तो कोई बात नहीं, अगर जल्दी जल्दी भी पढ़ ली, अगर कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी करते, आखिर तो हमने वहां जाना है ना, फिर वो नाराज हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाए। अब देखिए ये तो मैंने एक मिसाल दी है ना, अब कितनी मिसालें ले लें। अब ये क्लास की बात है, अरे नहीं, वो मेरा काम बहुत जरूरी है, वो करना जरूरी है, ये तो कोई बात नहीं, ये तो बाद में भी होता रहेगा। इन चीजों को जो अल्लाह ताला के हकूक है ना, या अल्लाह की फरमाबरदारी का काम है, ये मिसाल के तौर पे एक अल्लाह का हुक्म मानना है, उसको हम बहुत लाइट लेते हैं, और जो दूसरे काम है या दूसरों के हकूक है या दूसरों की नाराजगी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी है। वो ना कुछ कह दे, वो ना ऐसे समझ ले, अल्लाह ताला का हक है कि उसकी फरमाबरदारी की जाए, ओ वो कोई बात नहीं है, वो लाइट सी चीज है, वो कोई बात नहीं, कर लेंगे, उसकी खैर है। लेकिन उस दिन इंसान हसरत करेगा, अफसोस करेगा, क्यों मैंने कोताही की, क्योंकि अब पता चलेगा ना कि उसकी क्या रिजल्ट निकल रहा है। कहा हदीस में आता है कि हर जहन्नमी को जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाएगा, और वो उस वक्त हसरत करेगा कि हाय काश मैं भी दुनिया में हिदायत पा जाता तो आज ये मेरा ठिकाना होता। तो फिर सोचिए अफसोस का क्या आलम होगा, कितनी हसरत होगी कि लोगों के पास भी मौके थे, उन्होंने फायदा उठा लिया, और मैं क्या करती रही, मैंने अपना वक्त गवा दिया, मैंने अपनी जिंदगी गवा दी, मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, या मैंने फलां को अपना दोस्त बना लिया था, उसने मुझे उल्टे रास्ते पे लगाया, कितनी उसके ऊपर पशेमानी होगी। मैं ऐसे लोगों में उठती बैठती थी जो ना खुद अल्लाह की तरफ आते थे ना मुझे आने देते थे, ये मैंने क्या कर दिया, कितनी ये सारी बातें हसरतों को और पशेमानियों का सबब बनेगी। अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया अल्लाह हु अकबर कि अगर कोई शख्स अपने योमे विलादत से लेकर इंतहाई उम्र रसीदगी तक, यानी बुढ़ापे तक, मरने के दिन इतनी उम्र पाले कि वो बूढ़ा हो जाए और मरने के दिन तक अल्लाह की इताअत में चेहरे के बल घिसटता रहे, तो वो भी कयामत के दिन अपने इस अमल को हकीर समझेगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ और करना चाहिए था, मैं किधर अपना वक्त गंवा बैठी, मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, मैंने क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं किया, अल्लाह को याद नहीं किया। देखे ना इंसान इस पे भी पछताएगा कि मैं उस मजलिस में क्यों गई जहां पे अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ, मैं वहां क्यों बैठी जहां पे अल्लाह की याद नहीं थी, मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों उठती बैठती रही जो मुझे अल्लाह की इताअत से रोकते रहे। तो वो इंसान वो भी हसरत करेगा, ये जो सारा वक्त नेकियां करता रहा ये भी इंसान समझेगा ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, मुझे इससे भी ज्यादा करना चाहिए था। सोचें कि फिर कितना करने की जरूरत है और कितनी ज्यादा पछतावे बन जाएंगे ये गुनाह जो है ना, जिनको आज खुश हो के करते हैं और जिन पे तारीफें भी बटोरते हैं, लोग भी तारीफें करते, जाहिर है जो गुनाह कर रहे होते हैं आजकल तो हर एक को शौक होता है दूसरे को बस खुश कर देना। लोग गुनाह कर रहे हैं, हम उनकी तारीफें कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वाह क्या जबरदस्त काम आपने किया, हम भूले नहीं समाते। यही गुनाह हसरत बन जाएंगे, ये गुनाह पछतावे बन जाएंगे, इन्हीं गुनाहों पे इंसान उस दिन रोएगा, मैंने क्यों कर लिए। वो ही मजलिस से जिनसे उठ के आते हैं तो कहते हैं बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, और वहां पे अल्लाह का जिक्र एक भी नहीं हुआ। उन्हीं पे रोएंगे जिन पे आज थैंक यू कर रहे होते हैं कि आपने हमें बुला लिया इस मजलिस में, हमें तो मजा ही बहुत आया। और उन्हीं एक्टिविटीज में जिनमें हमें आज बहुत फन मिल रहा है, बड़ी हमारी एंटरटेनमेंट हो रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं या और कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर इंसान पछताएगा, मैंने अल्लाह के हक में क्यों कमी कर दी, ये मैंने क्या किया। इन कुंतु लमिना साखिरीन, और बेशक मैं तो था मजाक उड़ाने वालों में से। ये ना हो कि इंसान ये कहे, ये अल्लाह ताला ने बता दिया, क्योंकि कोई लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे, तुम ये उनमें से ना हो जाना, ये तुम ये कहो कि हाय काश मैं मजाक उड़ाने वालों में से। तो किन का मजाक उड़ाते थे, दीन का ना, रसूलों का, अल्लाह की बातों का, कितनी कॉमन है ये चीजें। दीन को तो सबने ऐसे ही समझा हुआ कि कोई भी उसके ऊपर कोई बात कर ले, नोबडी माइंड्स, राइट। आप किसी के ऊपर बात कर दे, किसी को बुरा कह दे, या कोई बैठा हो तो आप उसके ऊपर कोई ऐब निकाल लें, देखो जरा फिर वो आपको क्या कहता है। लोग जुर्रत नहीं करते, या मैं कहेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमें कुछ कहेंगे, लेकिन अल्लाह के दीन के ऊपर फ्री हैंड सबने ऐसे लिया हुआ कि किसी को परवाह ही नहीं, सब बातें मनाते, मजाक करते, मजलिसों में मजाक होते, हंसते हैं उसके ऊपर, देखो ये क्या बात है। औ तकूला, या कहे, अब ये पिछली बात कंटिन्यू हो रही है, पहली बात क्या कही, या हसरा था, ये ना हो कि ऐसा हो कि तुम ये कहो, या कहे कोई नफ्स, लव अन अल्लाह हदानी लकुंतु मिनल मुत्तकीन, अगर अल्लाह हमें भी हिदायत देता तो हम भी मुत्तकी हो जाते, हम भी तकवा वाले, यानी अल्लाह पे डाल दिया उस वहां सोच के कि ये आज हमें जो मिल रहा है, ये बजाय ये सोचते कि हमने खुद अपना बुरा किया, कहते हैं अगर अल्लाह हमें भी हिदायत देते तो आज हम भी तो देखो ना इनके साथ होते। बेशक हिदायत अल्लाह ही की तरफ से होती है, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, लेकिन अल्लाह ताला उसी नफ्स को हिदायत देता है जिसमें तलब होती है। तुमने कितनी तड़प तड़प की अल्लाह ताला से दुआएं की, तुमने कितनी तलब दिखाई, तुम कितने मारे मारे फिरते थे हिदायत के लिए, पैसे के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, ठीक है, स्टेटस के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, कुर्सियां पाने के लिए, वोटों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, किसी तरह हमें मिल जाए। हिदायत के लिए भी कभी किसी ने इस तरह स्ट्रगल की हो और फिर ना मिले तो फिर बताओ, लेकिन जब खुद तलब ही नहीं, हिदायत का पैगाम घरों में पड़ा हुआ है, उसकी तरफ को तवज्जो ही नहीं, हिदायत आ चुकी है, पैगंबर की बातें हम तक महफूज पहुंच चुकी हैं, घरों में रखी हुई किताबें, किसी को उठाने की फुर्सत नहीं। अब वहां जाकर कहेंगे अगर अल्लाह हमें हिदायत देता, अल्लाह ताला ने तो हिदायत का पैगाम भेज दिया था। आगे इसका जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है 59 आयत में, लेकिन वहां पे कह रहे हैं अल्लाह मुझे अगर हिदायत दे देता। देख लें कितनी हसरतें होंगी, हिदायत की हसरत होगी, ये नहीं कहेगा अल्लाह मुझे भी पैसे दे देता, दुनिया के अंदर मैं तो गरीब रहा, अल्लाह मेरी भी दिनों दिन खुशियों के हो जाते, मुझे भी जॉब मिल जाती, मेरा भी बिजनेस अच्छा हो जाता, कोई चीज की नहीं हसरत हो रही, हाँ हिदायत की हो रही, जिस हिदायत को आज कुछ नहीं समझते, बल्कि कोई हिदायत का पैगाम लेकर भी आए तो उसको भी रिजेक्ट करते हैं, जाओ हमारे पास टाइम नहीं है, उस दिन इंसान इसी हिदायत के लिए हसरत करेगा, काश मुझे भी ये मिल जाती, आज इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते ना, आज इसको फारिग लोगों का बस मशगला समझते हैं, आज इसको ये समझते हैं ना हमें इसकी क्या जरूरत है, आज इसको फालतू काम है ये कहते हैं, इसकी तरफ आना कोई नहीं चाहता, कल इसी के लिए हसरत करेंगे, क्या काश मैं मुत्तकी में से फिर हो जाता, मैं भी मुत्तकी हो जाता, अब एहसास हो गया कि कितना तकवा जरूरी था, तकवा क्या है, गुनाहों से बचना अल्लाह के डर की वजह से। फिर अल्लाह ताला तीसरी बात फरमाता है, फिर ये ना कहना औ तकूला हीना तरल अजाब, कि जब देख ले कोई नफ्स अजाब, तो ये ना हो कि वो ये कहे लव अन्ना ली कर्रतन फअकून मिनल महसिनीन, काश मेरे लिए एक दफा वापसी हो जाए, ए वन मोर चांस, ओनली वन चांस अगर मुझे मिल जाए ना,
मैं भी मोहसिनीन में सो जाऊं, ये भी नहीं कहता सोलहीन में से, ये भी नहीं कहता मोहसिनीन में से। आपने पढ़ी थी ना पिछली दफा मोहसिनीन की डेफिनेशन, उस वक्त हम कहते हैं कितनी ही मुश्किल है मोहसिन बनना, लेकिन वहां जाए कहेगा एक दफा हो जाए तो मैं तो मोहसिन बन के ही रहूंगा। अल्लाह अकबर, जब वक्त खत्म हो गया, जब हाथ से चीज निकल गई, तो अब कह रहा है कि काश मेरे ऐसा होता। और आपने सूरह मोमिनून में पढ़ा है ना, इंसान अपनी मौत के वक्त भी कहेगा, जो गफलत में जिंदगी गुजार चुका, या गुनाहों में, या कुफर शिर्क में, जितने भी नाफरमान है, वो सब मौत के वक्त कहेंगे अल्लाह इनको क्या, हमें एक दफा वापस जाने दे, या अल्लाह इनको क्या, हमें छोड़ दे, हमें एक दफा वापस जाने दे। हम वो अमल करेंगे जो हमने पहले नहीं किए, नेकी के काम। तो अब अजाब को जब देखेंगे ना, तो कहेंगे हाय वन टाइम, अल्लाह हु अकबर, हम सबको ये टाइम मिला हुआ है, लेकिन आज हमें नहीं परवाह मोहसिन बनने की, इतना साले बनने की भी नहीं परवाह। अगर इंसान ये समझ ले कि ये मुझे वापस भेज दिया गया और अब मुझे मिल गई है वो जिंदगी, तो फिर जो करना है कर लो। सालेहीन, सल्फ सालेहीन इसी तरह सोचा करते थे पुराने हमारे जो थे ना असलाफ, वो ऐसे ही सोचते थे कि हमें वापस जिंदगी मिल गई है, अब हम वापस आ गए हैं, अब करो जो करना है, जिसके लिए वहां पे रोओगे। हमने इजी मामला समझा हुआ, इसलिए हम तो कहते हैं हमारे, हमने थोड़ी ना कोई अजाब देखना है, ना हमें वहां पे कोई हसरत होनी है, हम तो पूरी कंप्लीट जिंदगी गुजार रहे हैं। भला अल्लाह ताला ने इनका जवाब दिया इन तीनों बातों का। देखिए पहली बात भी वो उसने जो कही, तो जाहिर है एक दुनिया के अंदर उसने अल्लाह के हक में कमी की थी, और हंसता रहा, हंसी मजाक उड़ाता था इनको, यानी हंसी मजाक इसी चीज का उड़ाया जाता है ना जिसको कुछ आप समझते नहीं है, जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, जिसकी कदर नहीं होती, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसका ही मजाक उड़ाते हैं ना। तो दीन हमारे लिए इतना ही इनवैल्यूएबल है कि आज उसकी मजाक हो रहे, या फिर वो अल्लाह मुझे हिदायत दे देता, ये तो झूठ बात है, अल्लाह ने तो हिदायत दी थी, या अल्लाह मुझे वापस जाने दे एक दफा, तो अल्लाह ताला फरमाने भला कद जाअत का आया थी, क्यों नहीं आई थी, अब जो ये तुम कह रहे हो आई थी। अच्छा अभी ये देखे ना एक बात, कि ये अल्लाह ताला वहां पे जो उसको जवाब देना है, या जो उसकी हसरत है, उनका जवाब हमें कुरान में दे के हमें शऊर दिलाया जा रहा है कि होश करो, ये है जवाब कि आई थी, यानी इस वक्त तुम्हारे पास आई हुई है ना, जो वहां जाके तुमने कहना है, तो आज हमें मिली हुई है ना ये आयात, कद जाअत का आयाती फकज्जबता बिहा, तुमने क्या किया, तुम्हारा रवैया क्या था, आज तो तुम कह रहे हो अगर अल्लाह हिदायत देता हम भी हो जाते इस तरह मुत्तकी, तो तुम्हारे पास तो आई थी आयतें, तुम्हें किसने रोका था, तुमने झुटला दिया उनको, बस तकबर था, और तुमने तकबर किया, तकबर क्या होता है, बतरुल हक व तकामतुन नास, बतरुल हक यानी हक वाजे हो गया, हक सामने आ गया, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं मानता, मुझे मुझे नहीं इस चीज की परवाह, मुझे नहीं ये समझ आती, मेरे माइंड में तो ये पड़ती ही नहीं है, मुझे तो इसके बारे में हजार क्वेश्चन है, ये क्या बात हुई, जब इंसान कहता ना ये क्या बात हुई, तो ये तकब्बुर नहीं तो और क्या है, अपने आप को बड़ा समझते हो, इतना बड़ा समझते हो कि अल्लाह की बात को कह रहे हो, ये क्या बात हुई। अरे इस तरह के क्वेश्चंस जिनके होते हैं वो समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहते, उनको इसके अंदर फ्लॉ नजर आ रहा होता है। एक समझने वाली नेचर अलग होती है और एक सरकशी वाली अलग होती है, इंसान के अंदर तकबर इतना है कि वो अपनी अकल को इतना बड़ा समझता है, तो तुमने आगे से तकबर किया, मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते, ये हमारे रिवाजों के खिलाफ है, ये हमारे खानदान की रिवायात के खिलाफ है, ये तो आज के नॉर्म्स के खिलाफ है, हम नहीं इसको मानते, ये तकबर ही तो है। और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकबर हुआ वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। जब आयते आए सामने, जब आप ससलम के फरामीन आए, झुक जाओ, आजी करो, कहां तुम और कहां अल्लाह की बात, और आगे से ये कह देना हम नहीं इसको मानते, हम नहीं इसको सही समझते, ये क्या बात हुई, ये कैसे आज हो सकता है, ये कहां से ले आए, ये तकब्बुर है। वकुंता मिनल काफिरीन, और तू था काफरों में से, तू इनकार करने वालों में से था, ये तेरा हाल था वहां पे। किसी के एक्सक्यूज को सुना नहीं जाएगा कि हाँ जी इन्होंने जेन्युइन एक्सक्यूज दिया है, वाकई बेचारे अगर इनको भी हिदायत मिले। नहीं, तुम्हारे पास आई तो थी हिदायत, क्या आई नहीं हुई आज? हम में से कौन है उस दिन जो कह सकेगा कि हमारे पास हिदायत का पैगाम नहीं आया था? कोई भी नहीं। وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً, उस दिन कयामत के दिन तुम देखोगे उन लोगों के चेहरे जो अल्लाह के ऊपर झूठ बोलते थे, उनके चेहरे स्याह होंगे। ये भी अल्लाह के ऊपर झूठ बोलना है ना, कि ऐसा तो कोई अल्लाह का हुक्म ही नहीं है ये। अल्लाह, हालांकि अल्लाह ताला ने वो हुक्म दिया हुआ है, ये अल्लाह के ऊपर झूठ बोलना है। अल्लाह ताला को ये बात पर तो पसंद ही नहीं, या अल्लाह ताला को तो ये बात पसंद है, जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था अल्लाह पे झूठ बांधने में क्या क्या चीजें आती हैं। खुदी से हदीसे घड़ लेना भी अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी अल्लाह की बात है। खुद हदीसे घड़ लेना, खुद ही तफसीरें अपनी मर्जी से करते जाना, जो अपने मसलक के मुताबिक है उन उस तरह से तफसीरें करते जाना, हदीस में जो तफसीर बताई गई है वो छोड़ देना। तो उनके चेहरे उस दिन स्याह होंगे। आपको पता है क्यामत के दिन चेहरे स्याह भी होंगे और रोशन भी होंगे, लेकिन इनके चेहरे स्याह होंगे। अलई सभी जहन्नम मसवन लिल मुतकब्बिरीन, क्या जहन्नम ठिकाना नहीं है जहन्नम तकब्बुर करने वालों के लिए? ये तकब्बुर ही है कि जब अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा जाए, ये भी एक तकब्बुर है कि तुम इतनी बड़ी अपने आप को चीज समझते हो कि अल्लाह के ऊपर बातें बनाने शुरू कर। और यही आयत इसी तरह, ये एंड का हिस्सा, ये हम शुरू में इस पारे के पढ़ चुके हैं सेम यही अल्फाज के साथ। अल्लाह ताला हमारे उस दिन की हसरतों से महफूज रखे, उस दिन पछतावों से महफूज रखे। अल्लाह ताला इसी दुनिया में हमें होश करने की तौफीक दे और गफलतों से निकलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हमें सबको सिरात मुस्तकीम पे चलाए, हिदायत हमें अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا
الحمد لله